अच्छा, अब मैं आज मतलब ये मैं दो चार लेक्चर हैं जो कि मैंने डेवलप किए हैं, ये बुनियादी तौर पर एक जियोलॉजी के हवाले से है कि जब हम लव गुड इस्तेमाल करते हैं, खैर, तो गुड जो है वो किसी के साथ अगर एटमोलॉजी या वर्ड की सतह पर या लिंग्विस्टिकली देखें तो जुड़ जाता है, तो इसका मतलब है आप उसको वैल्यू कर रहे हैं उस चीज को। तो वैल्यू क्या होती है और वैल्यू के सोर्सेज क्या होते हैं और वैल्यू के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और आपस में उनके टकराव किस नौयत के होते हैं, ये इस हवाले से मैं गुफ्तगू करूंगा। क्यों करूंगा? देखें, आप कहते हैं वी वैल्यू साइंस, ठीक है, आप वैल्यू करते हैं साइंस, लेकिन हम रिलीजन को भी वैल्यू करते हैं, हम वैल्यू करते हैं अदब को, हम वैल्यू करते हैं टेक्नोलॉजी को, हम वैल्यू करते हैं माशियात को, मुख्तलिफ चीजों को हम वैल्यू कर रहे होते हैं। तो क्या ये मुख्तलिफ वैल्यू स्ट्रक्चर्स हैं या ये तमाम वैल्यू स्ट्रक्चर आपस में रिकनसाइलेबल हैं या इनके दरमियान कोई तकादम है, इस हवाले से हम कंफ्यूज हो। आम तौर पर जो मेजर कंफ्यूजन है वो ये है कि जब आप किसी चीज को गुड के साथ एसोसिएट करते हैं तो आप उसको इवेल्युएट करते हैं आम तौर पे मॉरल सेंस, हालांकि जब आप एक्जियोलॉजी को पढ़ते हैं, एक्जियोलॉजी फलसफे की वो शाख है जो बहस करती है वैल्यू से। एक्जियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द एनालिसिस ऑफ वैल्यूज। तो जब हम वैल्यूज का एनालिसिस करते हैं तो ये पता चलता है कि हर वैल्यू मॉरल वैल्यू नहीं होती, मॉरल वैल्यूज के अलावा भी वैल्यू के कुछ दायरे हैं। वैल्यूज के, मॉरल वैल्यूज के दायरे के अलावा भी कुछ वैल्यू स्ट्रक्चर होते हैं। जरूरी नहीं कि जब भी आप किसी चीज को वैल्यू करें वो मॉरल वैल्यू ही के सेंस में आप उसे वैल्यू कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस चीज को मॉरल सेंस में वैल्यू नहीं कर रहे तो आप अगर ये क्लेरिफाई ना करें कि भाई इस चीज को मैं अखलाकी सतह पर वैल्यू नहीं कर रहा बल्कि जमालियाती सतह पर वैल्यू कर रहा हूं या माशियाती सतह पर वैल्यू कर रहा हूं या टेक्नोलॉजिकली वैल्यू कर रहा हूं, तो फिर कंफ्यूजन ये क्रिएट हो जाता है कि आपने इस चीज को वैल्यू मॉरल सेंस में ही किया। तो पहले मैं ये बताऊंगा कि एक्जियोलॉजी क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि वैल्यू एक्सपीरियंस किस नौयत का होता है, फिर मैं ये बताऊंगा कि एक से जायद वैल्यू स्ट्रक्चर्स की लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक मैनिफेस्टेशन किस तरह की होती है, और फिर ये देखूंगा कि वैल्यूज आपस में जब क्लैश करती हैं तो उसका इखलाकी ढांचे के ऊपर या मावाद तबियाती ढांचे के ऊपर क्या असरात रूनुमा होते हैं। तो ये चार स्टेप्स में मैं ये काम करूंगा। आज मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा एक्जियोलॉजी क्या है, एक्जियोलॉजी फलसफे की वो शाख है जो अखदार से बहस करती है, वैल्यूज से बहस करती है, वैल्यूज के सांचे और ढांचे से बहस करती है। आमतौर पर जो डेफिनेशन दी जाती है वो ये कि साइड टेकिंग पोजीशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस इज ए वैल्यू एक्सपीरियंस। जब आप किसी चीज को वैल्यू करते हैं तो इसका आम तौर पे मतलब ये लिया जाता है कि आप अपने आप को उस चीज के साथ एसोसिएट करते हैं, और जब आप किसी चीज को डिसवैल्यू करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को उस चीज से डिसएसोसिएट करते हैं। मसलन मैं ये कहता हूं कि सच बोलना अच्छी बात है, तो अगर मैं खुद भी झूठा हूं तब भी मैं ये कहता हूं कि अगर जो इंसान सच बोलता है वो काबिल कदर होता है, गो के मैं सच्चा नहीं हूं। अगर आप कहते हैं कि बम धमाके करना अच्छी बात होती है तो इसका मतलब है आप अगर बम धमाके नहीं भी कर रहे तो जो बम धमाका करता है आप उसके साथ वननेस शो कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि बम धमाका करना बुरी बात होती है, तो अगर आप धमाका कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को उससे डिसएसोसिएट कर रहे हैं। तो वैल्यू एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज को वैल्यू करते हैं, तो इसका मतलब होता है या तो आप उस चीज को करना चाहते हैं, या अगर आप नहीं करने की हौसला रखते हैं, तब भी आप ये समझते हैं कि जो ये कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और अगर मुझे मौका मिलता और मेरे अंदर सलाहियत होती या इस्तेदात होती या कुव्वत होती या जरूरत होती तो मैं भी ये करता। तो इसका मतलब है आप उस चीज को, उस अमल को, उस आइडिया को, उस प्रोसेस को, उस इदारे को वैल्यू कर रहे हैं। अब किसी चीज को वैल्यू करने की जो लिंग्विस्टिक मैनिफेस्टेशन है वो ये कि आप आमतौर पर उसके साथ गुड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, गुड, इट इज गुड। लेकिन ये जो वर्ड गुड है ये सिर्फ अखलाकी मायनों में इस्तेमाल नहीं होता। खैर सिर्फ अखलाकी मायनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन अच्छाई खैर के साथ नेसेसरीली लिंक्ड है या नहीं, ये एक कंफ्यूजिंग चीज है। आमतौर पर लोग समझते हैं जो अच्छा है वो खैर भी है, लेकिन आप वर्ड अच्छा सिर्फ अखलाकी सेंस में नहीं कहते। जब आप कहते हैं कि एक अच्छा दुकानदार, तो इसका क्या मतलब होता है? कामयाब दुकानदार को अच्छा दुकानदार। इंडिया के अंदर मेरे अब्बा बताते हैं कि मेरे अब्बा को आटे की चक्की की उनकी थी काम, आटे की चक्की, आटा लोग लेके आते थे, ये उसको पीस के देते थे। ये हमारा कारोबार था हमारे दादा का। तो हमारे दादा के बराबर में एक परचून की दुकान थी जो इनका पड़ोसी था, तो वो अपने बच्चे को सिखाता था कि पुड़िया बांधना किस तरह होती है। तो कई साल तक तो वो कहते हैं अरे माशाल्लाह आपका बच्चा दुकान में बैठा हुआ ना, अभी अभी तो इसको पुड़िया बांधना सिखा। पुड़िया बांधने का मतलब ये है कि जब तुम पकड़ोगे अनाज तो किस तरह पकड़ोगे, इस तरह पकड़ोगे तो दाने आएंगे, इस तरह पकड़ोगे तो कुछ दाने गिर जाएंगे, और जो दाने गिर जाएंगे वही तुम्हारा प्रॉफिट होगा। यू नो व्हाट आई मीन, वो पुड़िया बांधने कई साल लग जाते थे। इतना नहीं होता था इलेक्ट्रॉनिक, वो नहीं होते थे तोलने वाले, तो वो सीखता था। तो अच्छा दुकानदार वो होता है जो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है, वो होता है अच्छा दुकानदार। अगर आप अच्छे दुकानदार हो और आपकी दुकान पे जो भी आ रहा है आप उसमें दुकानदार चीजें निकाल निकाल के बुला रहे हो, तो आप अच्छे दुकानदार नहीं, तो आप उसको बर्बाद कर रहे हो कारोबार। जो भी आ रहा है उसको तुम खिला रहे हो, गन्ने की दुकान में सबको गंडेरियां बांट रहे हो, तो जाहिर है कि आंखें बंद चूसे हुए छिलके ही रह जाएंगे आपके पास जब लोग गंडेरी खरीद जाएंगे। तो अच्छा दुकानदार वो होता है जो अच्छा बिजनेस करे। तो ये अच्छाई स्पेसिफिक होगी उस दायरे में जो कि इकोनॉमिक या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपके लिए मुहैया करता है। इस तरह अच्छा जुआरी, अच्छा जुआरी वो होता है जो जुए हमें हमेशा जीतता है। अच्छा डाकू, अच्छा चोर जो कि अच्छी तरह ताला तोड़ता है। अच्छा मैकेनिक, अच्छा मैकेनिक वो होता है जो गाड़ी को ठीक कर देता है। अच्छा डॉक्टर वो जो इलाज कर देता है। तो जो आप जिस चीज की वजह वजूद होती है ना, जो वो अगर वो सही कर रहा है तो वो अच्छा, एक अच्छी तवायफ, तो वो जो अच्छी तरह लोगों को घेर ले और उसमें लोग पैसे लुटा दे, तो ये क्या नेसेसरीली खैर है या नहीं? लेकिन जब आप इस तवातुर के साथ इस वर्ड अच्छाई को इस्तेमाल करते हैं तो एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं आप, जिसे हम कहते हैं लिंग्विस्टिक इल्यूजन। तो अच्छी एक्टर, अच्छी एक्टर होने का मतलब ये कि मॉरल भी है। अच्छा डॉक्टर होने का मतलब ये है कि ये मॉरल डॉक्टर भी है, क्या वो कितनी फीस और लोगों की खाल खींच रहा है। अच्छा डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे पैसे नहीं लेगा. अच्छे डॉक्टर का मतलब ये है कि वो आपसे पैसे लेगा लेकिन जितने पैसे लेगा इलाज करेगा. अच्छाई का जो तवातुर के साथ इस्तेमाल है वो एक इल्यूजन ऑफ गुडनेस पैदा करता है जिसके नतीजे में आप हर अच्छाई को मॉरल सेंस में ले लेते, जिसके नतीजे में वो चीजें लेजिटिमाइज होना शुरू हो जाती है माशरे के. ये बहुत ही अच्छा सिंगर है. अच्छा सिंगर का क्या मतलब है? अच्छा गाना गाने वाला ना. तो गाना गाना इंट्रिंसिकली कोई अखलाकी काम है या गैर अखलाकी काम है, इस सवाल से आप बहस नहीं करते. या एक अच्छा सियासतदान, अ गुड पॉलिटिशियन कैन नेवर से नो. हजरत अमीर माविया क्या ही कॉल है कि मैंने हजरत अली पे फौकियत इसलिए हासिल की कि मैं जो सोचता था उसको जाहिर नहीं करता और अली जो सोचता था उसको जाहिर करता, इसलिए मैं जितनी जल्दी काम दो. यानी अगर आप दोनों की स्टेट्समैनशिप देख लें तो अगर माविया ने ज्यादा सक्सेसफुली रूल किया. कोई इंसान किसी की जरूरत नहीं थी कि अगर अमीर माविया की स्टेट में एक इंसर्जेंसी नहीं हुई, एक इंसर्जेंसी नहीं हुई. अगर अली के इंसर्जेंसी होती रही शहीद कर दी. और उस वक्त जिस वक्त अगर अमीर माविया थे रोमन से पूरा बाजन टाइम ले लिया उन्होंने, फ्रांस तक पहुंच गए तो यानी कि दोनों का इंटरनल इंसर्जेंसी भी दबा दी और बाहर भी रोमन को भी मार के निकाल दिया पूरे इलाके में, उस इलाके से जिससे रोमन 2000 साल से रूल कर रहे थे उन इलाकों से मार के निकाल दिया. यानी दोनों तरफ उन्होंने डील किया. तो अब आप कहें कि एज अ पॉलिटिशियन स्टेट्समैन दोनों में से कौन सा स्टेट्समैन है, तो आप कहें अच्छा स्टेट्समैन वो होता है जो स्टेट को यूनिफाई कर ले और उसके सामने कोई भी जरूरत ना हो कि वो चैलेंज कर सके स्टेट सॉवरेनिटी. स्टेट सॉवरेनिटी को कोई चैलेंज नहीं कर रहा, तो गुड पॉलिसी, गुड स्टेटमेंट. तो बताने का मतलब ये कि जब आप वर्ड अच्छाई इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिशियन के लिए, तो वो पॉलिटिशियन की जो अच्छाई आप बयान कर रहे हैं, यानी कि मैकियावेली का जो वो है वो कहता है अ गुड पॉलिटिशियन इज समवन हु ब्रेव लाइक लायन एंड कनिंग लाइक फॉक्स. लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह ताकतवर. क्योंकि वो कहता है कि लोमड़ी बहुत अकलमंद होती है लेकिन भेड़ियों से अपने आप को नहीं बचाते, भेड़िया उसका गला दबा देता है. और शेर बहुत ताकतवर होता है लेकिन जाल से अपने आप को नहीं बचाता. तो अगर शेर का जिस्म हो और लोमड़ी का बेचा हो तो फिर उसको कोई शिकस्त नहीं देता, इनवेंसिबल हो जाता. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जितने सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है वो सक्सेसफुल पॉलिटिशियन इंट्रिंसिकली मॉरल भी होंगे कि नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम. यू नो व्हाट आई मीन. तो ये जो वर्ड अच्छाई है इसका तवातुर के साथ इस्तेमाल एक लिंग्विस्टिक इल्यूजन क्रिएट करता है बिटवीन मोरालिटी एंड वैल्यू. आमतौर पर इंसानी तारीख के अंदर जो कदर होती है ना वो मॉरल भी होती है. यही इंसानी तारीख में रहा कि इंसानों ने जिसे कदर समझा और अकदार समझा वो मॉरल होती थी या मॉरल फ्रेमवर्क के अंदर होती थी. लेकिन जो जमाने में मैं और आप जिंदा है क्या ऐसा ही है या नहीं, ये है एक प्रॉब्लम. तो कुछ लोग कहते हैं ये जिन चीजों को अच्छाई बोल रहे हैं ना ये अच्छाई तो है लेकिन हम इसे मॉरल नहीं समझते. तो क्या ये कह देने से काफी होता है? हम ये एनालिसिस में आपको ये बताएंगे ये काफी नहीं होता, वो आपके मॉरल स्ट्रक्चर को रीडिफाइन कर देते और उस चीज को जिसे आप शर समझते हैं वो रियलिटी बना देते और आप उसे मॉरल समझ के करना शुरू करते, मॉरलाइज करना शुरू करते. आप रमजान का जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर बता रहे हैं रोजे की फजीलत और रोजे का इंसानी जिंदगी पे असर, उसमें एक मौलाना साहब को बिठाया हुआ है और एक नाचने वाली को बिठाया हुआ है. वो बता रहे हैं रोजे का इंसानी जिंदगी में पढ़ने वाले अच्छा था। वो रीमा बता रही है मैं रोजे में जाती हूँ, पूरे रोजे रखती हूँ और रोजे रख के इस तरह बेहतरीन मैं परफॉर्म करती हूँ। आंख बंद करती हूँ, अल्लाह से मेरा ताल्लुक हो जाए, फिर अल्लाह की मदद से मैं वो सीन कर देती हूँ। तो जितने सीन आपने देखे होंगे रीमा के, वो सब अल्लाह की मदद से उसने किए। अल्लाह उसे मदद कर रहा है रोजे की हालत में। और मैडम नूर जहाँ कहती है मैं वजू करके जाती हूँ गाना गाने, ये मैं ऐसी बात बता रहा हूँ बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। रोजे वजू करके मैं
इंटरव्यू कर रहे हैं कि मैं जो आपकी बात करती है इंटरव्यू लिया जाता था, लेकिन इसको किस तरीके से फैलाया जाता है अभी म्यूजिक खराब है लाल उसके हवाले से बात आती है। तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि जी वो आपका क्या सुनना है चलें जी, मैं बहुत परेशान था, मैंने नमाज पढ़ना शुरू की और मैंने सलाम फेरा है और मैंने टेलीफोन की घंटी बजी, मैंने उठाया और मुझे वो गालियां कर रखी। आप बताइए कि वो आदमी उससे इंटरव्यू ले रहा है एज ए बींग मुस्लिम, यानी उसको लाया किस तरीके से जाता है कि इन अदारों में काम करने वाले लोग जो हैं वो अच्छे लोग हैं। आप जो अच्छा ही बात कर रहे हैं उसको
ठंडा माहौल है और हम लोग
मॉरलाइज कर रहे हैं, यानी मॉरल पे ला रहे हैं कि देखिए ये अच्छी चीज होगी। ये मैंने खुद टीवी पे देखा, जब आप नाचने गाने वाले उस तबके से जिसने इस्लाम का अदार करा दिया, वहां आके एक आदमी बैठ के, एक मौलाना बैठ के उस आदमी का इंटरव्यू ले रहे हैं कि इस्लाम के आपके आपके जिंदगी में असरात, और वो ये वाला बता रहे हैं।
इसमें मतलब नहीं आने जो बुनियादी मतलब गुफ्तगु है वो तो करीब ये हुई कि मतलब अगर आज से पहले जो है किसी जमाने में कोई हम मॉरल बात करते थे और वो बाकायदा अखलाकी तौर पर भी मॉरल होती थी, तो उसका तो ताल्लुक ये हुआ कि डोमिनेट जो उस वक्त का डिस्कोर्स है जो भी मेटाफिजिक्स होगी तो उससे खैर निकलेगा ना। अब हम एक मतलब ऐसे जमाने में कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है मतलब डोमिनेट स्कोर जो है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है, तो अब उसके अंदर आप जो है मतलब अगर आप कोई जो है सोशली और कल्चरली आप डिफरेंट भी हैं, लेकिन ये कि जो भी आपकी मतलब मेटाफिजिक्स है तो वो डोमिनेट तो नहीं है।
मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो हमेशा होता रहा कि डोमिनेंट मॉरल डिस्कोर्स आपकी तमाम वैल्यू स्ट्रक्चर को मुतासर कर देता था, आज भी डोमिनेंट मॉरल स्ट्रक्चर ही आपकी तमाम वैल्यू स्ट्रक्चर को रीडिफाइन कर रहा है, लेकिन उसको आप मॉरल नहीं समझ रहे, ये मॉरली कर रहे हैं टीवी के ऊपर आप आकर। लेकिन कहते हैं नहीं ये एक अलग चीज है, तो हम ये दोनों पॉसिबिलिटीज आपको बताऊंगा कि कंपार्टमेंटलाइजेशन। पहला जो आप करते ही हैं कि आप अपनी जिंदगी को मुख्तलिफ खानों में बांट देते हैं, कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं कि देखें एक मेरा दायरा है माशियात, एक मेरी जिंदगी का दायरा है फैमिली का, एक मेरी जिंदगी का दायरा है सियासत का, एक मेरी जिंदगी का दायरा है टेक्निकलिटीज का, एक मेरी जिंदगी का दायरा है इखलासियात का भी, एक मेरी जिंदगी का दायरा है मजहबियत का। तो जब मैं टेक्निकलिटीज में रहूंगा तो मैं चीजों को वैल्यू करूंगा टेक्निकली, लेकिन जब मैं बाजार में होगा तो मैं चीजों को वैल्यू करूंगा बाजार की रेशनैलिटी से, और जब मैं घर आ जाऊंगा तो मैं उसको वैल्यू करूंगा फैमिली वैल्यूज की बुनियाद पर, और जब मैं अखलाकियात के दायरे में जाऊंगा तो अखलाकियात के दायरे में चला जाऊंगा, और जब मैं मजहब के दायरे में जाऊंगा तो मजहब की बुनियादों पर उसको वैल्यू करूंगा। इसका मतलब है मैं मुख्तलिफ दायरों में मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ तरीकों से वैल्यू करूंगा। इसका मतलब यह है कि इस तरह से मुख्तलिफ दायरों में जिंदगी मेरी बढ़ जाएगी, ये मुख्तलिफ दायरों में बटी हुई है और ये हर दायरा एक आइलैंड की तरह दूसरे दायरे से इसका टोटल, यानी कि जब आप कहेंगे अच्छा डॉक्टर तो इसका मतलब है कि वो डॉक्टर के पास तुम क्यों जा रहे हो, क्या अपनी रूह की बालिदगी के लिए जा रहे हो, क्या अपनी शख्सियत की शनाख्त के लिए जा रहे हो, अपनी खुदा की इताअत गुजार बनने के लिए डॉक्टर पास, भाई डॉक्टर पास में जा रहे हो पेट में दर्द हो गया था, तो अच्छा डॉक्टर कौन होगा जो आपका इलाज करेगा। लिहाजा डॉक्टर की अच्छाई का जो मेयार होगा वो उसकी सक्सेसफुल सर्विसेज की बुनियाद पर आप तय कर देंगे, ठीक है ना। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा कि वो अपनी बीवी के साथ किस तरह पेश आता है, वो हलाल हराम का ख्याल करता है नहीं करता, उसका तकवा कैसा है। मेरे जो नाना थे वो डॉक्टर थे लेकिन वो हकीम भी थे और वो होम्योपैथ भी थे, तो उन्होंने, वो सर्जन थे, लंदन से पढ़ के आए थे, लेकिन वो जवान आदमियों का इलाज करते थे एलोपैथिक मेडिसिन, बच्चों का इलाज करते थे होम्योपैथी से और बूढ़ों का इलाज करते थे हिकमत से, ठीक। और मेरे वालिद ने उनसे होम्योपैथी, उन्हीं ने कहा कि तुम होम्योपैथी बनो। उनका ये ख्याल था कि अगर डॉक्टर का तकवा खराब हो जाए तो शफा नहीं हो। मेरे नाना का ये ख्याल था कि गुनाहगार आदमी से शफा नहीं हो सकती, और तकवे का मतलब ये है कि तुम हलाल हराम की जो आदमी पाबंदी नहीं कर रहा उसकी दवा से कभी इंसान शफा याद नहीं होगा, अगर वो ठीक हो गया तो कोई दूसरी बीमारी पैदा कर देगा। तो पहली, और ये सिर्फ मेरे नाना की नहीं, हाइनेमैन जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन का बानी है वो कहता है कि जो गुनाहगार आदमी है उसका वो इलाज नहीं कर सकता। सबसे पहला शर्त यह है कि वो जोहद इख्तियार करे। हाइनेमैन के सात बच्चे थे, वो एक ही कमरे में रहता था, वो एक वक्त का खाना खाता था और कभी उसने अपने पेशे को पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, और जो भी दवा खाता था उसको अपने ऊपर तजर्बा करता था। 35 नई दवाएं उसने इजाद की अपने ऊपर इलाज, जिसकी वजह से उसको बीमारी हो गई और मर गया। ये हाइनेमैन का ये ख्याल है। अभी डॉक्टर की अच्छाई के लिए जरूरी है भाई, काली बकरा हो, कुछ भी कर रहा हो, हराम खा रहा हो, हलाल खा रहा हो, गलत लोगों के पेट फाड़ गए लेकिन तो ठीक हो रहे, इसका मतलब वो बकवास करते थे ना सब। ये हुआ ना भाई, क्या मतलब अच्छाई का मतलब हैज नथिंग टू डू विद मोरालिटी। डॉक्टर शाह जो वजीर बना हुआ है लिटरली गालियां बकता है, मैंने उसको खुद गाली बकते हुए हर किस्म की गाली बकता है ये अपने पेशेंट, सब चुप करके गाली सुनते हैं, दवा लेते हैं आगे, क्यों क्योंकि ठीक हो जाते हैं, ठीक कर देता हूँ। तो तुम दरअसल क्या हो, तुम एक जिस्म हो, जिस्म के लिए फिजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम की फिजिकल कॉज है, फिजिकल कॉजेज के फिजिकल इफेक्ट होते हैं और फिजिकल इफेक्ट के फिजिकल कॉजेज होते हैं। तो आपने अपनी जात को किस पर रिड्यूस कर दिया, बॉडी पे, तो उसके नजमे तुम्हारी इज्जत है ना, ये वो हलाल हराम तकवा ये वो फला फजूल चीज का कोई काम नहीं। लिहाजा आप इस दायरे में जो वैल्यू करेंगे वो एक अलग दायरा है वैल्यू का। फिर आप मैकेनिक के पास जब जाते हैं तो मैकेनिक से आप कुछ ये पूछते हैं कि भाई तुम अपने बच्चे को किस तरह रहते हो, ये आपका इससे तरवा होता है, मेरी गाड़ी खराब होगी उसको ठीक करना है। अच्छा मैकेनिक कौन है, जितने पैसे लेता है उसमें गाड़ी ठीक कर देता है। क्यों गाड़ी ठीक है, कभी उसने पूछा कि गाड़ी में आप बैठ के क्या करते हैं, इसका क्या, क्यों आपने गाड़ी ली हुई, गाड़ी घड़ा गाड़ी क्यों नहीं ले लेते। उसके पास आप जाएंगे वो आपका काम करेगा, आप उसको कहेंगे अच्छा मैकेनिक। उसके उसूल कुछ और होंगे, टेक्निकल बेसिस पर आप डॉक्टर को और मैकेनिक को वैल्यू करते हैं। तो डॉक्टर और मैकेनिक के साथ पास आप क्यों जाते हैं और उनको क्यों वैल्यू करते हैं, क्योंकि जो मकासद आपके हैं वो पूरे कर देता। लेकिन जब आप बाजार में जाते हैं तो अच्छा अच्छी अच्छी खरीदारी कैसी होती है, अच्छी खरीदारी वो होती है जिसमें आप दुकानदार के मफादात को नुकसान पहुंचाकर अपने मफादात पूरे करें। और अच्छी व्यापारी कौन होता है, जो खरीदार के ज्यादा नुकसान पहुंचा के अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, ठीक है। तो अच्छा दुकानदार जो होगा वो अच्छा दुकानदार कारोबारी की पर्सपेक्टिव से डिफरेंट होगा और दुकानदार के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट होगा, होगा कि नहीं है? है? लेकिन जब एक अच्छी दुकानदारी की बुनियाद पर आप फैसले कर रहे हैं तो उस वक्त जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप होंगे बहसियत दुकानदार वो स्टेट ऑफ माइंड होगी जो कि एक डॉक्टर की होती है या डॉक्टर को जब आप वैल्यू कर रहे होते हैं जिस बुनियाद पर और दुकानदार को जब आप वैल्यू कर रहे होते हैं जिस बुनियाद पर दोनों एक होती हैं डिफरेंट होती हैं। इसी तरीके से किसी चीज को आप जमालियाती सतह पर वैल्यू करते हैं खूबसूरती की सतह जमालियाती वैल्यू होती है ना यानी कुछ चीजें आपको अच्छी लगती हैं खूबसूरत लगती हैं अट्रैक्टिव लगती हैं एस्थेटिकली आपको वैल्यू करते हैं तो आप उनको एस्थेटिकली वैल्यू करते हैं तो वो जो एस्थेटिकली जब आप किसी चीज को वैल्यू कर रहे होते हैं तो क्या जरूरी है कि वो मॉरल भी जमालियाती सतह पर अगर आप किसी को वैल्यू कर रहे हैं तो जरूरी है कि वो मॉरली भी वैल्यू करो
जरूरी
इसी तरीके से कुछ चीजों को आप मॉरली भी वैल्यू करें अगर आपने अपनी जिंदगी को इस तरह खानों में बांट दिया इसे हम कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ वैल्यूज आपने वैल्यूज को मुख्तलिफ खानों में बांट दिया तो आप ये कहते हैं कि देखो भाई जब मैं डॉक्टर को वैल्यू करता हूं तो मैं मॉरल बुनियादों पर वैल्यू नहीं करता जब मैं एक मैकेनिक को वैल्यू कर रहा हूं तो मैं मॉरल बुनियादों पर वैल्यू नहीं कर रहा जब मैं किसी खेल को वैल्यू कर रहा हूं तो मैं मॉरल बुनियादों पर वैल्यू नहीं कर रहा जब मैं किसी चीज को जमालियाती बुनियादों पर वैल्यू कर रहा हूं तो मैं मॉरली वैल्यू नहीं कर रहा लेकिन जब मैं किसी चीज को मॉरली वैल्यू कर रहा हूं तो वो एक मॉरल पोजिशन है प्रिंसिपल पोजिशन है वो एक अलग पोजिशन है तो इसका मतलब ये है कि आप इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी के हर दायरे का इखलाकियात से कोई ताल्लुक नहीं है ये हुआ ना इसका मतलब भाई कि जब मैं बाजार में हूंगा उसका इखलाकियात से क्या ताल्लुक बिजनेस कर रहा हूं मैं जब मैं दुकानदारी जब मैं इलाज कर रहा हूं तो मोरालिटी से क्या ताल्लुक इलाज करवा रहा हूं मैं जब मैं किसी चीज की खूबसूरती या बदसूरती को वैल्यू कर रहा हूं तो इसका इखलाकियात से क्या ताल्लुक है मैं जमालियाती अपनी तस्कीन कर रहा हूं और कभी जरूरत पड़ गई तो कोई अखलाकी बात भी कर अखलाकी तौर पर ही वैल्यू कर तो दूसरा काम आपने किया कि मोरालिटी को जिंदगी से निकालकर एक खाने में बंद कर दिया कि कभी अब मोरालिटी का भी वक्त हो गया वरना आम तौर पर मोरालिटी का कोई जरूरत नहीं है मोरालिटी ऐसा ऐसा होता नहीं होता यह है कि जब आप बाजार में होते हैं जब आप मैकेनिक के पास होते हैं जब आप डॉक्टर के पास होते हैं जब आप किसी चीज को जमालियाती सतह पर वैल्यू कर रहे होते हैं ऐसा नहीं होता कि उसका मोरालिटी से कोई ताल्लुक सवाल ये कि आपने रीडिफाइन कर लिया अपनी मोरालिटी ये एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह होता है लेकिन पहले यह समझ में आ गया कि कंपार्टमेंटलाइजेशन और वैल्यूज जो होती हैं वो किस तरीके से आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ दायरों में मोरालिटी को एब्स्ट्रैक्ट करती है और आप ये समझते हैं इसका मोरालिटी से क्या ताल्लुक जब मैं कोई दुकान पे बैठा हूं उसका मोरालिटी से क्या ताल्लुक जब मैं किसी क्या कहते हैं उससे बैठा हुआ हूं डॉक्टर के पास बैठा हुआ हूँ या किसी इंजीनियर के पास बैठा हुआ हूँ या किसी टेक्नीशियन के पास बैठा हूँ तो उसको अगर मैं वैल्यू कर रहा हूँ तो मोरालिटी से क्या ताल्लुक ये जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं इनको क्यों अपॉइंट किया जाता है इसकी तनख्वाह क्यों होती है सुबह शाम तक यही करता रहता है पूरा साल यही करता है पूरा साल का यही काम होता है कि किस तरह तुम अपनी सेविंग्स को छुपाओ अपने प्रॉफिट को छुपाओ इसके लिए तुम्हें पैसे तुम कहते हो एक अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट है ये इसका क्या मतलब सबसे बड़ा चोर है चोर है लेकिन आप कहते हो चोर कहते हो इज्जत होती है माशरे में वो माशरे में आके बता रहा होता है लोगों को माशरे में बता रहा होता है वैल्यूज क्या होती है अकदार क्या होती है ये है वो है फला, जो कि चार्टेड अकाउंटेंट तबलीगी जमात में भी जाता है। सीबीएम के अंदर जो बड़े चार्टेड अकाउंटेंट हैं सब तबलीगी जमात
में।
ये तो काम है हमारा। इसका मतलब क्या है कि जब तुम किसी चीज को, इसका दूसरा ना, एक तो तुमने अखलाकियात को जिंदगी से काट दिया, दूसरी चीज तुमने उस काम को भी जिंदगी से काट दिया। दूसरा काम तुमने ये किया कि वो जो काम मैं कर रहा हूँ उसको तुम कह रहे भाई मैं नौकरी पे आया हूँ, ये काम है, इस काम को मैं करता हूँ और इस काम के मैं कर रहा हूँ, इसका पूरी ओवरऑल जिंदगी और निजाम जिंदगी से क्या, इससे मेरे को मैं थोड़ी कुछ कर, वैसे भी निजाम जिंदगी बहुत अच्छा है। तो आपने क्या किया, अपना वो दायरा, पहले आपने उस दायरे से मोरालिटी को बांधा, दूसरा आपने ये काम किया कि उस दायरे को जिंदगी से निकाल दिया और कहा मैं उनको यहां पर काम कर रहा हूं, मैं तेरा काम कर रहा हूं। अभी जो न्यूज एंकर पर्सन होता है ये क्या कर रहा होता है, अगर जो दायरा है जिससे उसको बाहर नहीं जाना, उससे बाहर अगर आप जाएं तो क्या करता है, या तो कहता है मुझे एक फोन कॉल रिसीव करनी है, या कहता है ब्रेक पर मैं चला जाता हूँ, इंटरप्ट कर देता कहता है, उससे कहेंगे भाई तुमने क्यों किया, तो क्या भाई मैं ये मेरा काम है, इसीलिए तो मुझे पैसे मिलते। अब मैं और रहीम बैठे हुए थे चाय की दुकान पे, तो पीछे एक टीवी पर एक एंकर पर्सन है वो नाजाबाद में रहता है, वो वहां बैठा हुआ था, अपने मोहतरम को बता रहा था कि अच्छे एंकर पर्सन की नुमाया खसूसियात, तो वो दोनों जो है ना सुन रहे थे, उसने जिस तरह पीर साहब उनको बताए थे और हम दोनों भी सुन रहे थे, हम दोनों अपनी बकबक बंद करके दोनों ने कान वाला सुन रहे थे, हम कौन सा मॉरल काम कर रहे वो बताए किस तरह से मैंने यूं किया और यूं करके मैंने रोक दिया। तो जैसे ही वो जो है ना यू ज्यादा उसने इस तरह की बातें की तो मैंने कहा ब्रेक पे चला, मेरा प्रोग्राम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान देख, तो भाई मैं कोई भी ऐसा बात तो नहीं कर सका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हूँ, तो तुमने देखा इस तरह होते हैं भाई कुछ, तो तुम आते रहोगे तो मैं सिखा दूंगा। वो तो दोनों थे, वो उसके एजेंट थे सर, जो हमने इंटरप्रेट किया, हम दोनों भी पलट के हमने देखा तो उनकी शक्लें जो थी वो इस तरह की थी जो आमतौर पर मेहमानों में बैठे होते, तो उनका काम होता है जब इस तरह की कोई बात हो तो, और तुम्हें मैंने जो सवाल बता दिया ना तुम्हें वो करना है, और तुम्हें जो सवाल बताया तुम वो करना है, तुम दोनों ये सवाल कर लो तो फिर मैं संभाल लो, तो वो ये सब कुछ जो होता है आदमी के सामने किस तरह पेश हो रहा है, आदमी के सामने इस तरह पेश हो रहा है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इंजीनियर है ना ये सब कुछ, तो वो सब इंजीनियर है, लेकिन पाकिस्तान बहुत सारे लोग इसे इंजीनियर भी समझते हैं, बहुत सारे लोग उसे मैटर ऑफ फैक्ट समझते हैं कि ये सब स्पॉन्टेनियसली और एब्रप्टली हुआ है, ऐसा नहीं है। तो इल्यूजन ऑफ स्पॉन्टेनिटी जो वो कहता है ना डिल्यूज, इल्यूजन ऑफ स्पॉन्टेनिटी तुम्हें दिखाता है, व्हाट इज मूवी एंड व्हाट इज मोशन मूवी पिक्चर, इट इज दी मोमेंट दी ट्रैप ऑफ इमेज, इमेज की को कैद करने की कोशिश है तस्वीर, और फिल्म क्या है मूवी क्या है वो इवेंट को कैद करने की, मोमेंट को लम्हों को कैद करने की एक्टिविटी, तो वो जो लम्हों को कैद किया था वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस। तो आप ये इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि ये जो दायरा है ना इस कमरे के अंदर में आ गया, तो उसमें मुझे इस प्रोग्राम को चलाने के जितनी दुनिया जहां की बदमाशियां करनी वो जायज है, क्योंकि मुझे काम करना, वरना मैं काम नहीं करता, मुझे निकाल देंगे नौकरी से, लिहाजा ये काम मैं कर रहा। तो उस काम को तुमने जिंदगी और निजाम जिंदगी से काट लिया, दूसरा काम तुमने ले लिया, और अगर तुमने नहीं काटा तो तुम वैल्यू नहीं हासिल कर सकते, तुम अच्छा एंकर पर्सन नहीं बन सकते, अच्छा एंकर पर्सन बनने के लिए तुम्हें सब बदमाशियां करनी पड़ेगी, अगर तुमने नहीं किया तो नहीं कर। तो दूसरा काम पहले आपने ये किया कि अखलाकियात को उन दायरों से निकाला, अलग कर दिया, फिर दूसरा ये कि वो जो तुम काम कर रहे हो उसको तुमने निकाल के अलग करके अलग रख दिया। जैसा मैं बताया था कि वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर से पूछा, मर रही है उसकी माँ जो 10 दिन से वेंटिलेटर के ऊपर है, वो सिर्फ ये बताने गया कि देखें ये डॉक्टर दवाएं ये दे रहे हैं आगे बता दें दवाएं ठीक दे रहे हैं या नहीं दे रहे. एक उसके दोस्त के रेफरेंस से उसके पास गए और डॉक्टर का इंतजार करते रहे कि जब बिल्कुल खारिज हो जाए जब जाने लगे तो कब सुर एक नर. तो हम बैठे रहे और दोस्त हमारा उसने कहा कि सब ये दवाएं दे. बोले अच्छा आप उनके हाँ ठीक है दीज आर दी बेस्ट मेडिसिन यू कैन ऑफर. उसके बाद इनके उसने इशारा किया तो वो हम ये समझे कि वो ये कह रहा है कि पैसे मत देना. तो 400 रुपए जो कि पीछे बैठी हुई थी औरत पैसे लेने वाली 400. तो वो जो जिसकी माँ जो लेके गया था लड़का जिसके रेफरेंस के थ्रू हम गए थे पैसे नहीं डॉक्टर साहब ने कहा है कि पैसे नहीं नहीं डॉक्टर साहब ने कहा है कि 100 रुपए कंसेशन. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ मैंने ये मेरा रोजी है. मैं घास घोड़ा इस तरह की बातें करता हूँ घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो क्या भूखा मर जाए क्या मैं भूखा मर जाऊँ तो मैं क्या इलाज भूखा मर रहा है तो भूखा मर रहा है. सैकड़ों आदमियों को तुमने देखा 50,000-60,000 रुपए ब्रीफ केस में भूखा मर रहा है 16 लाख रुपए की गाड़ी में तू घर जा रहा है भूखा मर रहा है. वो ही कहता है मैं जो मैं हफ्ते में एक दिन मुफ्त इलाज करता हूँ और 6 दिन मैं लोगों की खाल खींचता हूँ. तो ये मेरा जो काम है इसका निजाम जिंदगी से कोई ताल्लुक तो मेरा काम है जिस तरह मैं कसाई का काम है बकरे काटना मेरा काम है लोगों का इलाज करना. वो कसाई मुफ्त में देगा यही है ना वो पता नहीं कौन से बुजुर्ग है उनको कसाइयों को कहते हैं कसाइयों को बुजुर्ग की दुआ शंत सब तो उन्होंने कहा उसने कहा कोर्स आके दे दिया तो लेकिन ये भटियारे वाले उसने रोटी नहीं दी इसलिए वो कहते हैं हमारे हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि वो भटियारा जो होता है जितना भी कमा ले बरकत नहीं होगी उसको क्योंकि बद्दुआ है उसके और कसाई कुछ भी करेगा उसको प्रॉफिट होगा दुआ पेशे में पेशे को दुआ और वेस्पा पे बैठा होगा और वो खैरात भी बहुत करेगा खाली नहीं भेजेगा कुछ ना कुछ दे देगा. यू नो व्हाट आई मीन. तो बताने का मतलब ये है कि अगर फंस गया डॉक्टर ये कहता है कि मैं ये कर रहा हूँ तो मेरी बीवी एक डॉक्टर के पास जब वो बच्ची थी तो उसके वालिद जा रहे थे उनके वालिद के बाद वो भी जाने लगी और वो बड़ी हो गई और उसके बच्चे हो गए. तो हमारे बच्चे के स्कूल में उन्होंने कहा कि भाई सब बच्चे जो हैं उनका मेडिकल टेस्ट करवाएं कि बच्चे सही सुनते हैं या नहीं. तो वो ENT स्पेशलिस्ट है तो वो उसका अपना इलाज करवाने गई थी तो वो उसने कहा चलो ये तो हमारे अंकल कहती हूँ उनको अंकल 20 साल से वो जानते हैं उसने कहा कि अंकल जो है ना उसे कहा है तलाका ये वो तो एक रेफरेंस लेटर चाहिए था उसके बाद तो उसने कहा हाँ उन्होंने हंसते हंसते हुए इसको उन्होंने लिखा उसका 500 रुपये ले लिया 500 रुपये मुझे हैरत हुई मुझे सदमा हुआ यार. फिर फौरन ही उसने मुझसे कहा कि यार जिस कहाँ पढ़ा रहे हो वहाँ मैंने कहा मैं उसको पढ़ा रहा हूँ अच्छा मैं हाँ ये 5-6 हज़ार रुपये फीस है और मेरे भी 3 बच्चे हैं उनकी तकरीबन एक साल की 3 महीने की 1 लाख रुपये हो जाती है. भाई 1 लाख रुपये जो तुम मेंटेन कर रहे हो इसी तरह मेंटेन होगा ना ये इसी तरह मेंटेन होगा ना ये इस तरह तो मेंटेन नहीं हो सकता. फी सबीला तुम कर रहे
हो मोरलिटी
लाओगे तो नहीं चलेगा. तो इसका मतलब जो तुम काम कर रहे हो उसका निजाम जिंदगी से एक खास किस्म का ताल्लुक है ना.
यस
वो एक्सेप्शन है. और दूसरी बात ये कि अगर वो इतना बड़ा आदमी नहीं हो तो फिर वो ये अफोर्ड भी नहीं कर सकता.
वाकई
इस तरह के लोग एक्सेप्शन है. अच्छे डॉक्टर हैं ना यानी कि देखो मसला ये होता है कि इंसान जब किसी का दुख और तकलीफ कम कर सकता है ना तो उसके अंदर अच्छाई भी आती है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि अच्छे हैं लेकिन वो जो अच्छाई करते हैं ना वो अपनी मोरालिटी की बुनियाद पे करते हैं, उस इंस्टीट्यूशन की वजह से नहीं करते। डॉक्टर भट्टी जो है, जो सर्जन है ना, केडीए के 60 लाख रुपए उसको देने हैं, 60 लाख, 6 मिलियन रुपए केडीए को उसको पे करने हैं जो उसे ऑपरेशन करनी है बगैर पैसे लिए। वो कहता है जिस दिन डेट देता है ना वो ऑपरेशन की लियाकत में होता है केडीए के पैनल पे, तो वो उस दिन ऑपरेट करेगा। अब वो कहते हैं कि भाई वो केडीए के पैनल पे पैसे नहीं आ रहे तो हमने केडीए वालों का, तो वो कहता है कि देखो भाई मेरे इसमें कितने पैसे हैं, तो कहते हैं भाई डॉक्टर के सर्जन के 40,000 है, एनेस्थीजियस के 22,000 है और इसमें, तो होता है भाई ठीक है मेरे माइनस कर दो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। उससे कहता है देखें जी मैं अपने पैसे खत्म कर रहा हूँ, आप ऐसा कीजिए ये पैसे जमा करा दीजिए इनको और मेरे पैसे माइनस कर दीजिए। आगे आगे नहीं आए, नहीं आए, नंगे पैर घूम रहा होता है सर्जन है ना वो, तो वो अंदर उसके अंदर ऑपरेशन थिएटर में ही रहता है, ज्यादा बात बात नहीं करता। तो बताने का मतलब ये 6 मिलियन उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, पैसे नहीं दे रहे केडीए वाले, लेकिन कर रहा है ऑपरेशन, सही है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं करते ना ऑपरेशन, तो अब वो जो कर रहा है वो किस बुनियाद पे कर रहा है और जो नहीं कर रहा क्या इंस्टीट्यूशन उसको मजबूर करता है या नहीं, इंस्टीट्यूशन उसको मजबूर नहीं करता। इंस्टीट्यूशन तो यही कहता है कि प्रोफेशन को अलग रखो और जिंदगी को अलग रखो और इनको इवेंट्स के तौर पर लो कि अब मैं डॉक्टर बन गया, अब मैं बाप बन गया, अब मैं मुसलमान बन गया, अब मैं नाचने वाला बन गया, अब मैं यू नो लोगों की मदद करने वाला बन गया, ये बन गया, मुख्तलिफ अपने ऊपर वो चढ़ा लो, मुख्तलिफ रोल प्ले करो और मुख्तलिफ रोल का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। बज़ाहिर ऐसा लगता है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि ताल्लुक होता है, एक कोहेरेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, लेकिन उसको देखने के लिए आपको फिलोसॉफिकल एनालिसिस करना पड़ेगा।
जिसमें जो सवाल है ये जो जो रद्द हाल है, मतलब ये जो भी आदमी अपनी जिंदगी को कंपार्टमेंटेशन में बांटता है तो क्या वो अपनी मर्जी से और अपनी सजा से बांटता है या कि ये इसके ऊपर इम्पोज जो है पर्सनैलिटी है जो एक आवर के साथ इम्पोज की गई है, लिहाजा वो मजबूर है कि वो इसको एक्सेप्ट करें।
देखिए इसमें मुख्तलिफ फलसफियाना जो तौजीहात हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे स्ट्रक्चरलिस्ट हैं और फंक्शनलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटीज की स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ही इस तरह की है कि वो मुख्तलिफ तरीकों में जिंदगी को बांट देता है। जैसे डरखाइन ये कहता है या पार्सन ये कहता है कि चार तरह के स्ट्रक्चर्स में मॉडर्न सोसाइटीज बटी हुई है। ये मैं बता रहा हूँ आपको 19वीं सदी की बात, 19वीं सदी के हैं दोनों। तो डरखाइन ये कहता है कि चार हिस्सों में, पार्सन कहता है चार हिस्सों में बटी हुई है मॉडर्न सोसाइटी। एक स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली है, एक स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट है, एक स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन है और एक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ है। ये चार ही तरह के स्ट्रक्चर क्यों है, उसने कहा रैशनैलिटी चार मुख्तलिफ तरीकों से अपना इजहार करती है। व्हाट इज रैशनल इन फैमिली मे नॉट बी रैशनल इन रिलीजन, एंड व्हाट इज रैशनल इन रिलीजन मे नॉट बी रैशनल इन मार्केट, एंड व्हाट इज रैशनल इन मार्केट मे नॉट बी रैशनल इन लॉ। तो चार मुख्तलिफ तरीकों से रैशनैलिटी इजहार करती है। अब अगर और कॉम्प्लेक्स हो गई तो और मल्टीपल स्ट्रक्चर पैदा हो जाएंगे, तो चार से 4,000 हो जाएंगे, सही है। तो वो जो 4,000 मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं रैशनैलिटी के, वो मुख्तलिफ डिमांड करते हैं रैशनल बिहेवियर। व्हाट इज रैशनल बिहेवियर इन मार्केट मे नॉट बी द रैशनल बिहेवियर इन इन लॉ और इन इकोनॉमिक्स और इन एवरीवेयर। लेकिन पार्सन ने इसकी इंडिकेशन दी थी कि ये मुमकिन है कि कोई एक स्ट्रक्चर इतना डोमिनेट कर जाए कि दूसरे तमाम स्ट्रक्चर को वो रीमॉडल कर दे, ये गुंजाइश थी। तो स्ट्रक्चरलिस्ट ये कहते हैं कि असल में जो चीज तुम्हें गवर्न करती है वो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, एजेंसी कुछ नहीं करती, इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता, वो जो एंकर पर्सन बन गया उसको मीडिया का स्ट्रक्चर डिटरमिन करेगा और जो लॉयर है उसके स्ट्रक्चर ऑफ लॉ डिटरमिन करेगा और जो ज्यूरिसप्रूडेंस का है उसको स्ट्रक्चर ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस डिटरमिन करेगा, जो टीचर है उसको स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन डिटरमिन करेगा, एक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी मुख्तलिफ डिटरमिन करेगा। स्ट्रक्चरलिस्ट की एक्सप्लेनेशन ये है। जो एंटी फाउंडेशनलिस्ट है पोस्ट में वो कहते हैं नहीं, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया जाए पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, स्ट्रक्चर के अलावा भी स्पेस होती है, स्पेस जिसमें रहकर आप स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है वो इम्पोज भी अगर हो जाए तो तुम स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सकते हो, ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो ये बयान करते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, पहले तो ये कि इस मैकेनिज्म को समझना है कि अगर एक चीज को तुम गुड कह रहे हो टेक्निकल सेंस में तो मॉरल सेंस में तुम न्यूट्रल हो या मॉरल सेंस को रीडिफाइन कर रहे हो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। जब तुम एक चीज को जमालियाती सतह पर गुड कह रहे हो तो तुम क्या मोरालिटी की सतह पर न्यूट्रल हो या मोरालिटी को रीडिफाइन कर रहे हो, ये है असल मसला। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे पाकिस्तान में एक आर्टिस्ट है जो न्यूड पेंटिंग बनाती थी खातून, अपनी आर्ट का इजहार वो न्यूड पेंटिंग जिससे करती थी, लेकिन उनको बड़ा सदमा था इस बात का कि पाकिस्तान में जो है वो न्यूड पेंटिंग की नुमाइश नहीं हो सकती, गंदे लोग समझदार नहीं है और गंदी सोच है जिसकी वजह से वो न्यूड पेंटिंग को एप्रिशिएट नहीं कर पाती। मैं न्यू पेंटिंग बनाना भी नहीं छोड़ूंगी और चाहती भी हूं कि उसकी एग्जीबिशन हो जाए, तो मैंने कहीं छुप छुपा के किसी घर में कर लेती हूँ जो जहां पर एनलाइटेंड और पढ़े लिखे और समझदार और इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग आते हैं उसकी तरह, लेकिन मैं चाहती हूँ बड़े पैमाने पर भी करूँ, क्या करूँ। मॉरल स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान का है वो ये कह रहा है ये खूबसूरती नहीं है, यानी मॉरल स्ट्रक्चर किसको डिटरमिन कर रहा है, एस्थेटिकल स्ट्रक्चर। वो कह रहा है तुम इसे अदब कह दो, ये अदब है ही नहीं, आर्ट है ही नहीं, ये वल्गैरिटी है। अब वो मुझसे रहे कि नहीं, दुनिया में सारे बड़े आर्टिस्टों ने ये काम किया तो मैं भी बड़ी आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, अगर मैं उसका काम नहीं कर रही कहा वो काम तो करूँ जो उन्होंने किया तो वो मैं करूँगा, लेकिन ये मोरालिटी से चूंकि कंसिस्टेंट नहीं है तो मोरालिटी अपने आप को लिमिट नहीं कर रही है बल्कि मोरालिटी रीडिफाइन कर रही है एस्थेटिक स्ट्रक्चर को। उसने बहुत सोचने के बाद, क्योंकि मैं उसे पर्सनल भी जानता हूं, उसने बहुत सोचा और सोचने के बाद उसने पिकासो की तरह क्यूबिकल फॉर्म में न्यूड पेंटिंग शुरू की, क्यूब थ्री डायमेंशनल, लेकिन वो क्यूबिकल फॉर्म में बॉडी कैमोफ्लाज हो जाती है तो वो पता ही नहीं चलता क्या है। अब आपने नंगापन कर भी दिया और किसी को पता भी नहीं चला नंगापन किया तो आप भी खुश हो भी खुश, उसकी नुमाइश हो जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता है क्या, ये एब्स्ट्रैक्शन में चली गई, वो थ्रू क्यूबिकल आर्ट काम वही कर रही है। तो ये जो उसका आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर को रीडिफाइन किया है वो किससे किया है, मॉरल स्ट्रक्चर ने या रिलीजियस स्ट्रक्चर, कि हम ये करने नहीं देंगे। गैलरी वाले जो होते हैं वो कहते हैं क्या करें, दिल तो चाहता है लेकिन हम गैलरी जला देंगे, लोग मेरे डिफेंस में डिफेंस में भी जला देंगे, पता चल गया कि यहाँ पे हो रहा आ जाएंगे कोई ना कोई बदमाश और पथराव करेंगे तोड़ देंगे, ये गंदे लोग हैं क्या करें भाई, यहाँ पे सर्वाइव करना है, अदब की खिदमत करनी है, आर्ट की खिदमत करनी है, क्या करें। तो उन्होंने कहा भाई क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मैंने कहा ये
उसका स्ट्रक्चर तो अभी तक वैसा ही है, यानी मौका मिलेगा तो फिर से न्यू पेंटिंग की,
उसके नतीजे में न्यू पेंटिंग तो समझ क्यूब के अंदर तो किसी ने नहीं किया ना तो वो मशहूर होगी,
स्ट्रक्चर रीडिफाइन हो गया है।
एग्जैक्टली सवाल ये है कि अभी तो मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो क्या करे, पाकिस्तान के बाहर यही करती होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो उनकी शनाख्त हुई वो न्यूड पेंटिंग की वजह से नहीं हुई, जिसके लिए वो चाहती थी, वो ये चाहती थी कि उनको एक बड़ा आर्टिस्ट रिकग्नाइज कर लिया जाए, वो उनको कर लिया गया उनके तजर्बे की वजह से। हाँ भाई क्या बात है, ये कर भी दिया और किसी को पता भी नहीं चला क्या कर दिया, कमाल। ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट प्रोड्यूस कर दिया उन्होंने, तो उनका खुदा भी मिला और विखाले सनम भी, इधर के भी रहे उधर के भी, दोनों कामों। तो ये उसका जो मीडियम है उसको रीडिफाइन किया, स्ट्रक्चर ने रीडिफाइन कर दिया उस चीज को। इसके नतीजे में अगर फर्क किया यूरोप के अंदर दूसरी तरह कि अगर क्रिश्चियनिटी टॉलरेट नहीं करे न्यूडिटी को तो वो कंजर्वेटिव कहलाए, कमतर कहलाए, तो वो टॉलरेट करेंगे तो बड़े वाजे तौर, यानी कि उसने क्या किया वहां पर रिलीजियस स्ट्रक्चर हैज बीन रीडिफाइंड बाय द प्रिवेलिंग एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स ने रिलीजन को रीडिफाइन कर दिया। तो ये कहना कि जब कोई नॉन मॉरल वैल्यू स्ट्रक्चर मॉरल वैल्यू स्ट्रक्चर से टकराता है तो ये नहीं होता कि दोनों सर्वाइव करें, दोनों में से एक दूसरे को डोमिनेट करता है, या तो मॉरल स्ट्रक्चर रीडिफाइन कर देगा दूसरे स्ट्रक्चर को, या दूसरा स्ट्रक्चर मॉरल स्ट्रक्चर को रीडिफाइन कर देगा। अगर आप ये कहते हैं कि डॉक्टर इंसान इसलिए बनता है, जैसे मेरे बच्चे गाड़ी में बैठे होते हैं ना, तो मैंने बताया गाड़ियां दिखाते रहते हैं, बाबा ये गाड़ी कितनी अच्छी हुई थी, ठीक है दुनिया की सारी गाड़ियां हमारी गाड़ी से आगे जा रही होती, सब आगे जा रहा, बेटे पीछे देखो, पीछे देखो कितनी सारी गाड़ियां पीछे आ रही है, हमारी गाड़ी उन सबसे आगे, वो तो ठीक है लेकिन वो आगे निकल रही है ना तो लेकिन फिर भी पीछे कुछ ना कुछ गाड़ियां जरूर होंगी, तो मैं उनको पीछे भेज देता हूँ। तो अभी तो वो कहते हैं कि भाई मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, तो मेरी ये माँ बीवी कहती है कि भाई जब तुम पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाओगे तो तुम ये गाड़ी खरीदोगे। तो उससे दो बातें, एक तो ये मेरा बाप पढ़ा लिखा नहीं हो, और मेरा आदमी बाप पढ़ा आदमी भी नहीं, यही हुआ ना क्या मतलब, बाबा ने तो बहुत पढ़ा हुआ है, बोले हाँ इन्होंने जो पढ़ा हुआ है फजूल चीज पढ़ी हुई है, मैं भी चक्कर में आ गई शादी कर ली बदमाश, माल वाल बनाएगा, कोई माल वाल नहीं बनाता ज्यादा, तो ये ऐसे ही लारे लपटे देता रहता है, लेकिन तुम लोग डॉक्टर बनना तुम डॉक्टर बनना और तुम फौज में जाना, जो फौज में है वो मौज में है और जो डॉक्टर था वो कहता है। तो फर्ज किया कि मैं उसे बताता हूँ कि नहीं बेटे ऐसा नहीं होता, ये जहन्नुम में जाएंगे, जो इस तरह करें सब जहन्नुम में जाएंगे, ये डॉक्टर साहब भी हाँ मैंने कहा ये भी जहन्नुम में जाएगा, और ये इस तरह लोगों का इलाज कर करके पैसे ले रहा है, सही नहीं है, जहन्नुम में जाएगा। फर्ज करो कि मैं मर जाता हूँ, मेरी बीवी इस तरह ही इसको डिक्टेट कर देती है, तो वो इबादत समझ सकते हैं, बड़ा आदमी होता ही डॉक्टर वो बन ही इसीलिए रहा है कि वो गाड़ी खरीदनी है उसको, तो मेरी जो ख्वाहिशात है उनको हासिल करने का जरिया है डॉक्टरी, और तो कुछ नहीं है ना डॉक्टरी। हाँ कभी कभार मैं किसी की मुफ्त में मदद भी कर दूँ, एक एक दो लोगों का मुफ्त में इलाज है, एक टीका लगा दिया डिस्टिल वाटर का या बैंडेज कर दी, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, बाहर डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, अभी हम एक गए मेरी बीवी की ब्लड प्रेशर था तो उसके क्लिनिक पे गए, तो उसने ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया, और ब्लड प्रेशर चेक करवा के वो पलटी तो उसकी एड़ी पे वो जो वहां लगी हुई थी रीलिंग वो लगी और वो कट गया और खून शुरू हो गया, तो वो उठी डॉक्टर, उसने उनको डांटा और उसने उसको टाके लगाया, उसने उसको पूरी बैंडेज की और उसने कोई पैसा नहीं, उसने एंटी टेटनस एंटी, उसने कहा ये हमारे आए हैं और हमारे उससे चोट लगी है, और उसके बाद उसने फोन नंबर लिया, उसने कहा आप आएंगी और मैं खोलूंगी इसके टांके, और उसके बाद वो फोन करके पूछती थी कि आप कहता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, वो अच्छी है लेकिन अभी वो बहुत यंग है, अभी वो बहुत जवान है, नहीं हो सकता है वो करप्ट हो जाए, उसके भी बच्चे होंगे, उसकी भी ख्वाहिशात होंगी, वो कहेगी किस तरह मैं पैसे कमाऊंगी, इसी तरह कमाऊंगी ना भाई, तो हो सकता है वो इंस्टीट्यूशन उसको इनकरेज करता चला जाए कि भाई तुम इस तरह से करो, तो हो सकता है वो वैसी हो सकता है नहीं भी हो, तो एजेंसी यानी कि स्ट्रक्चर खुदा तो नहीं होता, दुनिया को इंसान चलाता है, खुदा तो नहीं, खुदा चलाता है इंसान चलाता है, स्ट्रक्चर तो नहीं चलाते। लेकिन हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि जब दो वैल्यू स्ट्रक्चर एक दूसरे से क्लैश करते हैं तो या तो मॉरल वैल्यू स्ट्रक्चर डोमिनेट करता है या फिर वो मॉरल वैल्यू स्ट्रक्चर डोमिनेट हो जाता है, और दोनों वैल्यूज बराबर सर्वाइव नहीं करती, या तो एस्थेटिक वैल्यूज रीडिफाइन करेंगी आपकी मॉरल वैल्यूज या मॉरल वैल्यूज रीडिफाइन करेंगी एस्थेटिक वैल्यूज को। तीसरा जो मसला है जो अभी सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा कि मॉरल वैल्यूज आती कहाँ से, ये तीसरी सतह की बहस है जो कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कौन है इसका सोर्स, क्या इसका सोर्स जहन इंसानी है, इदारा है, कुरान है, क्या है, क्या है इसका सोर्स, इंसान का विज्ञान है, इंसान की अकल है, इंसान की तहजीब है, इंसान की तारीख है, इंसान की जेंडर है, क्या है, जीन्स है, क्या चीज है, वो एक तीसरी सतह की बहस है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन पहली इस सतह पर हम जहन में बिठा लें कि मुमकिन ही नहीं है कि आप ये कहें कि ये वैल्यू मैं कर रहा हूं इस चीज को ये सोचे बगैर कि इसका मॉरल वैल्यू स्ट्रक्चर से क्या फायदा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों सर्वाइव करें। ठीक है खालिद भाई, आज इसको यहीं पे रोक लेते हैं, वो मुझे जरा हॉस्पिटल जाना है, सर भाई का बेटा है। ठीक है, कल मैं आऊंगा।
इस बारे में कोई अगर गुफ्तगू या कोई सवाल है तो बताएं।
सर डोमिनेट डिस्पोज जो होगा जो भी रेडियो दिखाई
देगा वो तो
उसी जो डोमिनेट
डिस्कोर होगा उसी को सिबॉर्डिनेट करेंगे, ऑटोमेटिक रेडियो फिनोमेना ये बन जाएगा।
नहीं तो मतलब
कोई खासा तो नहीं है ना, डोमिनेट स्कोर जो है कहाँ से आता है, ऐसा होता है कि मतलब कोई डिस्कोर आ जाए और लोग उसे कबूल कर लें, मतलब पैगम्बर आते हैं वो जो है मतलब एक सोसाइटी कायम करते हैं उनका डोमिनेट स्कोर जो है हो जाता है, फिर वो स्कोर खत्म भी तो हो जाता है, फिर ईसाई आए ईसाइयत की तो खत्म हो गई ना, यहूदियत आई तो डोमिनेट स्कोर था जो है मतलब हजरत मूसा अलैहि सलाम वगैरह तो खत्म हो गया ना, मतलब कैसे खत्म हो गया, मतलब जब कोई स्कोर आता है तो क्या वो फौरन उसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाता है या कोई स्कोर आता है तो उसको फौरन रिजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब जो स्पोर्ट्स आया उसने किस स्पोर्ट्स को रिप्लेस करने की कोशिश की, जो स्पोर्ट एग्जिस्ट करता था उसने उसको किस तरीके से जो है मतलब एक्सेप्ट किया या किस तरीके से एग्जिस्ट किया या किस तरीके से उसने एनालाइज किया है, मतलब मिसाल के तौर पर जो है अल्तनत उस्मानी 1924 तक जो है मतलब आहरे के मतलब अल्तनत उस्मानी एग्जिस्ट करती है ना, मतलब डोमिनेट स्पोर्ट्स तीन अरब आजमों में तो इस्लामी खिलाफत थी, मतलब मुगलिया सल्तनत 1857 तक एग्जिस्ट कर रही है ना, मतलब हिंदुस्तान के अंदर तो डोमिनेंट स्पोर्ट्स तो इस्लामी था ना वहां पर, मतलब उसके बाद जो है अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने क्या कर लिया, मतलब आकर गए तो जो अंग्रेज स्पोर्ट्स लाए थे वो आते ही उन्होंने पूरे स्पोर्ट्स इम्पोज तो नहीं कर दिए ना, मतलब एक स्ट्रगल है, मतलब तो वो कैसे, मतलब अब ये जो है उस अब जब एक स्पोर्ट्स को लेकर आए या ये तुर्कों को शिकस्त हुई तो मुस्तफा कमाल अतातुर्क अपना स्कोर जो है लेकर आया, तो जो डोमिनेंट स्कोर था उसने आने वाले स्कोर का इस्तेमाल किया या ये कि उसको उसने मुजाहमत की या ये कि उसने उसके साथ अपने आप को इंटर रिलेट किया, कोहेरेंस फैला दी कि भाई ये कोई हरज नहीं है ये भी साथ साथ चलेगा, तो किस तरीके से जो है मतलब उसका जो है इस्तेमाल या किस तरीके से उसकी मुजाहमत हुई वो फिर जो है उसकी रोशनी में वो आपका पुराना स्कोर्स जो है वो या तो उबारा आएगा या ये वो उससे मुजाहमत करता रहेगा या ये वो रीडिफाइन हो जाएगा या ये वो उससे टकरा कर आने वाले स्कोर्स को रीडिफाइन कर देगा, तो ये इसकी मुख्तलिफ जो है मतलब पोजिशन है हर मुल्क में जो है मतलब इसकी मुजाहमत इसकी जो है मतलब ये एक्सेप्टेंस मुख्तलिफ अंदाज से हुई है, अगर कोई एक स्कोर या कोई एक इसका मतलब आंसर जो है वो नहीं हो सकता, मतलब पाकिस्तानी सोसाइटी है जाहिर है कि डोमिनेंट स्कोर उसके बाद कल्चर जो आपका है वो कौन सा है, अलगर कल्चर है, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी सोसाइटी में न्यूड जो है तस्वीरों की हमारी डिफेंस सोसाइटी में भी नहीं हो सकती, इसका मतलब ये है कि रियासती सतह पर सकाफती अलगार हो जाए, 80 जो है मतलब चैनल खुल गए उरियानी फाशी का सैलाब आ गया, लेकिन अभी तक डोमिनेंट मॉरल स्ट्रक्चर जो है वो इस्लामी है, ٹھیک ہے نا. اب ایک علماء کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے, اسلامی تحریکوں کو اپنی قوت کا پتہ نہیں, روتی رہتی ہیں اور یوں ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی ابھی تک جو ہے ڈیفینس سوسائٹی میں نیوڈ نمائش میں اپنی پتہ ہی نہیں طاقت کا. اس طاقت میں تم اضافے کی جو ہے فکر کرو, تم رونے میں لگے ہوئے ہو کہ مغرب آ گیا ہے ہم کیا کریں اور کہاں جائیں گے. مطلب جو طاقت تمہاری موجود ہے اس طاقت کو کیسے برقرار رکھا جائے, صرف برقرار نہ رکھا جائے بلکہ طاقت میں کیسے اضافہ کیا جائے, ایمان کی جو سطح کم ہو رہی ہے اس کو کیسے پڑھایا جائے, یہ ہے نا. مطلب اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ریزسٹنس جو ہے بڑھتی جائے گی. وہ تو اپنا الغار کر رہا ہے, مطلب آپ کیا کر رہے ہیں, مطلب مسئلہ یہ ہے. مطلب مسئلہ یہ آپ تو سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. مطلب یعنی اب یہ مثال کے طور پر جو صاحب بھائی نے ایگزامپل دی کہ بھائی ڈاکٹر ہے یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب جو ہے مطلب وہ جب آگے آئے گا تو جو اسٹرکچر ہے مطلب تو ٹھہرے گا, اس کو اسکول میں بھی بھیجنا ہے اپنے بچوں کو, کالج میں بھی پڑھانا ہے, تو سب پیسے مطلب آئیں گے نا اس کے. تو یہ تو پیسے کے بغیر آدمی ہوگا, اگر وہ آپ سے پیسے نہیں لے گا تو آگے وہ پیسے کیسے دے گا. تو یہ کہ وہ اسٹرکچر اچھا, اب یہ بات بھی ہے ساتھ میں کہ اسٹرکچر اگر ڈومینیٹ ہو بھی جائے کوئی اسٹرکچر, تو اسٹرکچر خدا نہیں ہے. اس اسٹرکچر کے اندر ہوتے ہوئے بھی آپ اس اسٹرکچر سے ٹکر دے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کی شخصیت اتنی گروم ہونی چاہیے, اس کی جو ہے مطلب آئیڈینٹی, اس کا سیلف, اس کی اپسٹیمولوجی, اس کی آنٹولوجی, اس کی میٹافیزک اتنی اسٹرانگ ہوگی. آخر جو لوگ امریکہ برطانیہ میں رہتے ہیں اسی ماحول میں ان کی اولادیں اتنی مذہبی ہوتی ہیں کہ جو پاکستان میں مذہبی اسٹرکچر میں رہنے والوں کی نہیں ہوتی اولادیں. کیوں؟ اس لیے اسٹرکچر ڈومینیٹ ہونے کے باوجود یہ اسٹرکچر خدا نہیں ہے, مطلب اس کے اندر سے بھی راستے نکلتے ہیں نکالے جاتے ہیں مطلب. لیکن یہ کہ وہ راستے وہ نکالے گا اور راستے جو ہے وہ تلاش کرے گا کہ جو اس کو غلط سمجھتا ہو نا. جب آپ ڈومینیٹ اسٹرکچر کو صحیح سمجھتے ہیں یا اس میں کچھ اصلاحات کے ذریعے صحیح سمجھتے ہیں, جیسے علماء کرام میں اسلام اس میں سے ٹی وی میں سے فاش ہی نکال دو سب ٹھیک ہے بھائی. کوئی ٹی وی کوئی مطلب یہ درخت کا پتہ تھوڑی مطلب کیجیے, اچھا ہے کہ یہ پتے توڑ دو اور پھل جو ہے چھوڑ دو, بس پتے توڑو تو پھل بھی ٹوٹ جائیں گے بھائی اس میں, ایسا تھوڑی بھی مطلب ہوتا ہے. مطلب یعنی چیزوں کو بالکل سادگی کے ساتھ لے لینا, چیزوں کو یہ سمجھنا کہ جو بالکل سمپل جو ہے کوئی مطلب مسئلہ ہے, مطلب سر دودھ ہے یار, ایسا کرو اس پر سے تالائی ہٹا دو اور دودھ لے لو, ایسا تھوڑی مطلب یہ تو پھٹا ہوا دودھ ہے, پھٹے ہوئے دودھ میں سے آپ اچھا دودھ کہاں سے نکالو, پھٹیا دودھ جو ہے پورا پورا یہ اچھا نہیں ہو سکتا. مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھٹے ہوئے دودھ میں سے کچھ ہلا ہلا کر جائے کوئی جوں 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 کر کے اور کچھ جو ہے دودھ کے چمچے اسلامی نکال لیں گے اس کے اندر, ایسا نہیں کرنا بھائی. پھٹا ہوا دودھ ہے پھٹ گیا مطلب, تو پھینکو اٹھا کر, یا اس کا طریقہ یہ پھینکو بھی نہیں, اس کا جو ہے ہوا بنا دو, گرم کرو اس کو, ہوا ڈالے کر پانی نکال دو اور کھوے میں تبدیل کر دو, سالڈ کر دو. اس کی ہمت چاہیے نا, مطلب آگ ہے تمہارے پاس اتنی کہ تم اس کو جو ہے کھولا سکتے ہو مطلب, اور اس میں اتنی ہمت ہے کہ تمہاری آگ برداشت کر رہی ہو. اسی کا نام تو ہے مزاحمت, یہی تو ہوتی کہ مزاحمت جو ہے چیزوں کی شکل تبدیل کر دیتی ہے. ٹھیک ہے بھائی آ گئی ہے, اس کو جو ہے مطلب ری شیپنگ کر دو, ری ڈیفائن کر دو, ری انٹرپریٹ کر دو. یہ مزاحمت پہلے آپ کو پتا دو گے مسئلہ کیا ہے, حرام جی کا ہاں ٹھیک ہے سب صحیح, سب صحیح ہے. سال میں ایک ارتبہ جو ہے میڈیکل کیمپ لگا دو, بس تمہارا ہو گیا سب کا پورا جو تم نے ایک سال میں لوگوں کو ٹوٹا ہے, یا مطلب اللہ رسول کے نام پر جو ہے ٹوٹ مار کرتے رہو تم ایک سال تک, تو اس کے بعد سال میں ایک فری میڈیکل کیمپ اسلامک ایسوسی ایشن اور نارتھ امریکہ ایک کیمپ لگا دیے اور یہ بس ہو گیا سب آپ کا جو ہے. حالانکہ اس اسٹرکچر میں بھی آپ کر سکتے ہیں, کیوں نہیں بھائی, آپ یہ بولیں گے بھائی میری چیزیں 600 روپے ٹھیک ہے, جو بھی آ رہے ہیں جو دے دے وہ لے لوں گا, جو نہیں دے گا اس سے میں سوال نہیں کروں گا. تم جی کو کہتے ہو کہ نہیں 600 روپے دے کر ہی آدمی آئے گا, آپ بولے ٹھیک ہے بھائی 600 روپے, اس نے بولے میرے پاس پیسے جائیں, آپ کا دروازہ کھلا ہے پیسے والے کے لیے بھی اور غریب کے لیے, جو پیسے دے دے اوکے, اور جو پیسے نہ دے وہ نہ دے, جو 100 دینا چاہے وہ 100 دے دے, جو 50 دینا چاہے وہ 50 دے, اس میں کیا بات ہے. آپ نے اس کو انڈیکیٹ کیوں کیا آپ نے یہ مطلب, تو آپ اسٹرکچر کے اندر بھی کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں مطلب, لیکن اسٹرکچر کو آپ تو آپ نے تو پہلے اپنا مائنڈ مطلب گے ان کو چھوڑ دیں گے جو مطلب آن ریلیجیس ہو گئے, ہم تو بات کر رہے ہیں اس لیے جو لوگ تبلیغ جماعت میں, جو لوگ تنظیم اسلامی میں, جو لوگ جماعت اسلامی میں, وہ کیا کرتے ہیں ان کے ڈاکٹر کون سے اسلام ان کے پاس جو کیوں کہ تم نے اپنی ایک زندگی کا ایک نقشہ بنایا ہوا ہے کہ مجھے ڈیفینس سوسائٹی میں کوٹھی لینی ہے 2 کروڑ روپے کی. تم نے یہ نقشہ بنایا ہوا کہ میرے بچے امریکن اسکول میں پڑھیں گے. تم نے یہ نقشہ بنایا ہوا کہ میرے پاس نئے ماڈل کی گاڑی ہونی چاہیے. تم نے اپنی زندگی کا نقشہ یہ بنایا ہوا ہے کہ میرا اپارٹمنٹ 18 کمروں کا یہ ہونا چاہیے. تو یہ تو اس نقشے کے ساتھ تم جو ہے پیغمبر والی زندگی تو اچھا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی حضرت جو ہے فرعون کی طرح ہو اور تمہاری موت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے مطلب اگر پیغمبروں کی موت چاہتے ہو اور پیغمبروں کی جو ہے مطلب آخرت چاہتے ہو تو پیغمبروں کی طرح زندگی اثر کرنی پڑے گی. یہ کیا کرنا چاہتے ہو پیغمبروں کے نام پر اور آخرت چاہتے ہو پیغمبروں کے نام پر. یہ کیسے ہو سکتا ہے چھوڑ دو سارے کام یہ مطلب. بنیادی یہ ہے کہ جو آپ کی اخلاقیات جو ہے تو آپ کی سدا سے آئیں گی. اب آپ ادھر سے لے کر کچھ اور ادھر سے لے کر کچھ آپ چلائیں گے تو کچھ نہیں چلے گا. جو مطلب اخلاقی اس آدمی کا مطلب اخلاق کیا ہے جو ایک آدمی بھر رہا ہے تم اس سے پیسے مانگ رہے ہو مطلب ٹھیک ہے کہہ دے دو ٹھیک ہے کہہ دے دے لو. یہ مطلب کینسر کا پیشنٹ ہے آپ اس سے پیسے مانگ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے روٹی کے پیسے نہیں ہے ہوا کے پیسے نہیں ہے کہتے ہیں اگر ہم ان کی ہوا کے چکر میں پڑ جائیں گے تو ہمارا تو سب کسی میں خرچ ہو جائے گا. تمہارے خرچ کرنے اور کمانے کے پیمانے الگ ہیں نا. مطلب تم تو ویسٹرن پیراڈائم کے اندر سوچ رہے ہو کہ بھائی کمانا اسے کہتے ہیں کہ جو میرے ہاتھ میں آتا ہے اور خرچ کرنا وہ ہوتا ہے جو میرے ہاتھ سے جاتا ہے. تو اسلامک اپسٹیمولوجی میں جو خرچ اور پیمانے کے تو پیمانے کے پرنے کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے پوچھا کہ وہ جو بکری صبح ہوگی جس میں سے کیا بچا تو آپ نے کہا کہ وہ ایک جو ہے سستی بچی. آپ نے کہا یہ بچی ہے مطلب جو تم نے خرچ کر دیا وہ بچائے یہ جو تم نے رکھا ہے یہ مطلب کنسیپٹ یہ لگے. تو کنسیپٹ یہ ہے وہ آپ کی مطلب فٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ کی اس سے آتا ہے میٹافزکس سے آتا ہے. مطلب یہ سمجھ لیں کہ اگر میں نے خرچ کر دیا تو یہ تو مطلب نقصان کا سودا ہے اور جو میں نے بچا لیا وہ جو ہے مطلب. اور ان سے زیادہ آج کے جو اسلامی دنیا دار ہیں ان سے زیادہ جو ہے مطلب جو مطلب اسلامیت تھی وہ جو ہے ہارون کشید کے اندر بھی بادشاہ بن سے کہتے ہیں بادشاہ. اس نے بلایا اپنے طبیبوں کو اس نے کہا کہ بھائی یہ حلوہ ہی حلوہ مجھے بہت پسند ہے میں چاہتا ہوں کہ اس حلوے کو اس طریقے سے پریزرویٹیو اس میں کیا جائے کہ یہ کم از کم 1000 سال تک جو ہے خراب نہ ہو. حکیموں نے سائنسدانوں نے اپنے اپنے تجربے کر لیے تو 50-60 سال سے زیادہ جو ہے اس کو پریزرو نہیں کر سکتے. اس نے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں اس کو قیامت تک جو ہے کہ نہیں تو پاسبل ہی نہیں ہے. اس نے کہا کہ اس کو لے کر خراب کر دوں. اس نے کہا قیامت تک کے لیے محفوظ ہوگی. مطلب بادشاہ کو اتنی مطلب مطلب کی عقل کے اگر میں اللہ کی راہ میں خراب کر دوں تو یہ محفوظ ہے اور اگر اپنے پر خرچ کر لوں تو یہ محفوظ نہیں. اپنے حاضر کے جو ہے مسلمانوں کو یہ نہیں مطلب لیکن جو کھا لیا وہی تو اصل چیز ہے. جو ہم نے کھلا دیا وہ تو نقصان ہے ہمارا جو ہے کیونکہ آپ نے اپنے کچھ ماڈل بنائے ہوئے پیارے زندگی آپ نے بنائے ہوئے مطلب پیارے زندگی بناتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں ہمارے دوست ہیں مطلب تو بڑے کھاتے پیتے آدمی ہیں مطلب اور لوگوں کی قدر وغیرہ بھی جو ہے کرتے رہتے ہیں مطلب. تو ان کے گھر پہ جو مطلب وہ آدمی آئے مطلب ادوتی مطلب کرنے میں اس کو 5000 روپے دے دیے مطلب کہ بھائی جا کر اپنا کام اور یہ کرو. ان کے گھر کی کوئی چیز جو ہے ٹوٹی ہوئی تھی مطلب اس نے بولا کہ یار یہ جا رہا ہے اتنا تسکین آدمی ہے کہ یہ اس کو صحیح نہیں کروا سکتا. تو اس نے ان سے ان کی بیگم اپنی ٹی وی سے ان کی بیگم نے آ کے صاحب اگر گیا تو میں آ کر یہ ٹھیک کر دوں صاحب کا کر گیا مطلب. بھائی آپ اپنا کام کریں ہمارا مسئلہ نہیں. اگر ہم نے یہ ٹھیک کرانے کے چکر میں پڑ گئے نا مطلب یہ جب کرونا ہوگا کروا لیں گے مطلب اگر توجہ اس طرف ہو گئی نا تو پھر یہ جو ہے یہ 5000 روپے تو میں نہیں رہتے مطلب وہ میرے حال 6-7 روپے کام ہوگا مشکل سے مطلب. بعد میں جب آپ اپنی سمت بدل کہتے ہیں نا تو یہ چیزیں مطلب ان کی کوئی ویلو نہیں رہتی کہ بھائی گھر میں کیا چیز ٹوٹی ہوئی ہے کیا چیز آنی ہے کیا چیز خراب ہے. اب تو ہر آدمی کا مطلب یہ کہ سینس جو ہے ایستھیٹک سینس میڈیا نے اتنا پڑھا دیا ہے کہ وہ پہلے دیکھتا ہے جمالیات جو ہے مطلب گھر میں یہ ہے یہ جالی ٹوٹی ہوئی ہے رنگ نہیں ہوا ہے پہلے اس کی میں ٹچنگ کروا دوں ساڑی پر کسی نے ریس لگا دی ہے اس کو میں ٹھیک کروا دوں. تمہاری توجہ کے سارے دائرے تم سے شروع ہوتے ہیں اور تم پر ختم ہوتے ہیں. تو جب تم اس طریقے سے چلو گے تو تم اپنے لیے چلو گے کسی اور کے لیے تھوڑی چلو گے. ये तो मतलब कि वो है मतलब कि आप जो कितनी रेजिस्टेंस कर रहे हैं, आप किसी चीज को कितनी संजीदगी के साथ, इनको पता ही नहीं कुछ, मतलब ये तो ना पढ़ने के लिए तैयार है, ना सोचने के लिए तैयार है, ना समझने के लिए तैयार है, ना इनके साथ वो क्या रहा है, इनकी फसलें जो है बदल रही है, मतलब कुछ नहीं, बड़ी तेजी के साथ तब्दीली है। अभी मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं आन सहरा में जो है, मतलब वो भी कह रहे अपने गाँव जो है, मतलब तो उन्होंने वहां पर ये उन्हें हवा जो है खानी थी, तो उन्होंने कहा अपनी हालत है कि भाई वो मुझे हवा खानी है, दूध के साथ खानी है, तो दूध जो है वो हलीब ले आए। हमने हलीब वो हमारी गाय भैंस है, वो तो टेस्ले कंपनी आती है, तो वो सब दूध जो हम उनको फेंक देते हैं। गाँव में उनका भी किसी और के पास है, तो एक आदमी के पास, मतलब गाँव में कोई ऐसा घर नहीं था जो अपना दूध खुद इस्तेमाल करता, यानी जिसके पास एक अपनी गाय थी उसने भी अपना दूध एक्सले कंपनी को बेचा, वो खरीदते हैं, मतलब वो जो है मिल्क पैक जो है पीते हैं, वो आपको पिलाते हैं, खुद असली दूध पीना पसंद नहीं करता। और ये मैं आपको बता दूंगा, अगले 25 साल के अंदर सारी दूध की दुकानें खत्म हो जाएंगी, आपको कोई दूध नहीं मिलेगा, मतलब ना आपको हलाई मिलेगी, ना आपको सही मिलेगा, आप एक्सले ही का इंशाला दूध और सही खाएंगे सारे जो है।
हाँ,
खुशबू जो है, मतलब दूध है उसमें खुशबू नहीं है, कोई खायखा नहीं है, कपड़े का सही खाए बिल्कुल फजूल सही है जो है, मतलब वो क्या खिला रहे हैं हमें क्या पता, मतलब
किस प्रोसेस से
क्या ही दूध। मेरे दोस्त हैं जो उनको अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं इनका तो दूध की इतनी डिमांड है कि पूरी नहीं होती, तो पाउडर खिलाकर उसमें जो है खिलाते हैं आप लोगों को, आपको जो है ब्रांड जो बड़े रस से, मतलब खुदा और उसके रसूल पर इतना एतमाद नहीं है जितना एक्सले कंपनी पर एतमाद, क्यों साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी खुदा से भी ज्यादा, तो ये मतलब सब असायल है, मतलब जब इनके ऊपर आप गौर व फिक्र सही करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो जाहिर है असायल मल्टीप्लाई होंगे जो, मतलब कोई सोचे समझेंगे तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं, मतलब आर दी मतलब बस प्रोपेगेंडा लिटरेचर छापने का शौक है। आप जाएं बाजार में, हर रोज किताबें इस्लाम पर आएगी, हर रोज पता नहीं कितने मुसन्निफीन पैदा हो गए, सब बेच रहे हैं कमा रहे हैं, मतलब हर किताब की कीमत देखें आप, किस किताब की कॉस्ट क्या है, तुम कितने में बेच रहे हो भाई, क्यों तुमने क्या इतने मतलब आला कागज लगाए हुए, क्यों इतनी तुमने अलर्ट में छिड़के हुए भाई, आधा किताब क्या हो जाए, मतलब बिजनेस हो रहा है, मतलब कारोबार चल रहा है, तो एक अब सब तक चलेगा कुछ नहीं चलेगा, ये जब ये सोसाइटी के स्ट्रक्चर तब्दील हो जाएंगे, मॉरलिटी स्ट्रक्चर बदल जाएगा, तुम्हारी कोई किताब खरीदने वाला भी नहीं मिलेगा, सब तुम्हारे अदर से फरोख्त होंगे, किस तरह यूरोप के अंदर चर जो है फरोख्त होते हैं, जब वो मुसलमान आदमी ही नहीं रहेगा जो तुम्हें चंदा देता है, जो तुम्हारी मदद करता है, जो तुम्हारे मदर से चलाता है, कहाँ से चलाओगे तुम, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हुई जिनके बिजली के बिल लाखों रुपए के होते हैं, तो आदमी ही रहेगा वो रहेगा, तो गुजले उठाइल एक्सरसाइज खुद उनको मतलब अकवा करेंगे, मतलब तो इस्लामिया जिंदा है तो आपको चंदे मिलते हैं, इस्लामिया जिंदा नहीं रहेगी, तो अगर तुम दीन को छोड़ दो तो कम से कम अगर कारोबार ही कर रहे हो दीन के नाम पर, तो कारोबार का भी तकाजा ये है कि लोगों की दीनी हमियत और जो ट्रांसफॉर्मेशन जो 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 हो रहा है तो वैल्यूज का, इसको रजिस्ट करो अपने कारोबारी के लिए, मतलब नहीं करोगे तो ये होगा जो यूरोप में हो चुका है, मतलब चर्च वहां पर फरोख होते हैं हर हफ्ते कोई ना कोई चर्च फरोख होते हैं, कोई आबादी में से कोई आदमी उसका जो है चर्च के मतलब अपना याद उठाने के लिए तैयार नहीं, चर्च में इबादत करने के लिए तैयार नहीं, तो क्या करें, मौलवी कब तक चलेगा, मतलब मौलवी की औलाद मौलवी नहीं रही तो आदमी नहीं आ रहा इस तरह, मतलब ये आरती है, मतलब आरतियों यहाँ जो मतलब असला क्या है कि उनके यहाँ जो एक ही आदमी है कहेंगे जो तकसीन वगैरह काम करता है, उसके बाद कोई सारे मॉडर्न हो गए फारसी, कोई मौलवी क्यों बने, मतलब सबसे जलील और हकीर करीब ये चाहे आप फारसी बैठे सोच रहे हैं यार अगर ये मर गया कभी तो मतलब तो ये तकसीन के लिए आदमी कहाँ से लाएंगे, तो सब इंजीनियर डॉक्टर बिजनेस मैन है सारे, मतलब अब सोच रहे हैं यार वहां से इंडिया से इम्पोर्ट करें क्या नहीं करें, मतलब एक आदमी रह गए थे वो उसकी भी उम्र अच्छी खासी है, वो जो बताता है इबादत वगैरह क्या होता है किताब पढ़ते सुनाता है, आदमी नहीं खत्म, क्योंकि आप मॉडर्न हो गए ना, मतलब भारतीय कम्युनिटी मॉडर्न हो गई, मतलब ये सब चीजें आपके इर्द गिर्द होंगी, आपको पता ही नहीं ना, मतलब आपने कभी सोसाइटी को देखा ही नहीं, कभी आपने सोसाइटी में सज्जियां नहीं किया, कम्युनिटीज कैसे किस इंटीग्रेट हो रही है, किस तरीके से जो है तहलील हो रही है, किस तरीके से तब्दील हो रही है, पता ही कुछ नहीं पता। जो किसने तीन किताबें पढ़नी 1950 में, वो उन्हीं तीन किताबों को समझ रहा है कि पूरी कायनात इसमें समो गई है, यही इल्म है, इसके आगे ना कोई इल्म है ना इसके पीछे कोई इल्म है, यही किफायत करेगा ये हमारे लिए। जहालत के पर्दे हैं, मतलब जिसको समझते हैं कि नूर के पर्दे हैं, उसमें हर आदमी ने अपने आप को मलबूफ कर लिया है, अपनी दुनिया याद कर ली है, उस दुनिया के अंदर खुश है, उसी में खा रहा है पी रहा है, चंदे मिल रहे हैं, इमारतें बन रही हैं, हर आदमी को एक इमारतें बनाने का शौक है, जिसके बाद चार ऐसे आते हैं अपना एक फरगज, उसके बाद इतना बड़ा बोर्ड कब्रस्तानों के अंदर नहीं होता। अभी मैं क्या जनाब छबे अरा पर जो है यहाँ सब्जी मंडी का कब्रस्तान देगा, तो जनाब वहाँ पे अद्वे आदम तस्वीरें लगेंगी, म्यूजिक के ऊपर गए, मतलब वो नगमे सुनाए जा रहे हैं, उनकी तहरीके कोई साहब से कोई मतलब गुलाम अब्बास साहब कोई किसी ने शहीद वहीद कर दिया, उनकी तस्वीर लगी हुई है, वो जो है म्यूजिक के ऊपर गाना बज रहा है रात के 3 बजे, या अब्बास या अब्बास जो है, और चंदा जमा कर रहे हैं कि ये हमने आपकी खिदमत की है कब्रस्तान में, और मैं चंदा दे रहा हूँ, लेकिन हमने कारोबार बनाया ना हर चीज़ को, कब्रस्तान में भी है मतलब कारोबार कर रहे बैठे में, और ये म्यूजिक चला रहे हो रात के 3 बजे, और ये तुमने तस्वीरें लगाई हुई, मतलब कौन सा इस्लाम है भाई, ये कारोबारी इस्लाम चलेगा थोड़ी, मतलब
उनको
बताएगी
वो तो
मतलब मानने की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, सहाबा किराम की पूरी जिंदगी, ताबईन की पूरी जिंदगी, पूरी कुरान और सुन्नत और हदीस की किताबों के खिलाफ बता दें, मतलब ये तो इस्लामी इल्मियत के खिलाफ है, अय्याशी की जिंदगी तो इस्लामी इल्मियत के खिलाफ है, रसूलुल्लाह की सुन्नत साबिता के खिलाफ है, और पूरी पूरी किताब और रेखा को तो क्या मतलब, उम्मत मुस्लिमा का असल सवाल क्या है, मतलब उल्मा का सवाल है, अगर उल्मा सही हो तो उम्मत कभी खराब हो सकती है, मतलब क्या नहीं है, तो बस धीरे है, मतलब अगर मतलब तीन जो है ना वो कोई मतलब जहनी आयुष का नाम नहीं है, दीन को अमल का नाम है, मतलब जो भी आप अपने फिक्र पेश करते हैं अगर उसके साथ अमल नहीं है तो यही तो तबाही है, मतलब उम्मत मुस्लिमा की तबाही क्या है, उसके बाद दुनिया का सबसे आला तरीन नजरिया है और उसका जो अमल जो है उस दुनिया का तरीन अमल है, ठीक है, तो इसलिए जाहिर है उम्मत की असल तबाही है कि आप जिस चीज़ को सही समझते हैं, जिस चीज़ को आप बयान करते हैं, जिस चीज़ को आप समझते हैं कि यही कदर है, वैल्यू है, और उसी कदर को आप छोड़कर जो मगरिब की आई हुई कदरें हैं उनको आप जो है वैल्यू देते हैं, तो ये क्या है, रीडिफाइन है ना, मतलब जो कदरें जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, मतलब तारीफें बदल रही हैं, मतलब चीज़ों की तारीफें बदल रही हैं, जब आप चीज़ों के अल्फाज तो वही हैं लेकिन अल्फाज के आने बदल जाए, अल्फाज वही रहें और अल्फाज की अलामत बदल जाए, अल्फाज का स्ट्रक्चर जो है तब्दील हो जाए, तो गांधी साहब हैं उन्होंने सुन, हाँ मैं तो सुन्नत को मानता हूँ, कुरान भागता तो कुरान को ही मानता हूँ, तो क्या वो उस कुरान और उस सुन्नत को मानते हैं जो है असल में जो नहीं, वो अरे अगर आप इस्लामिक सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं तो अगर आप कुरान और सुन्नत को नहीं मानेंगे आपको छूते मारेगा हर आदमी, डिफेंस सोसाइटी की जो एक मॉड सड़की है वो भी आपको पकड़ लेगी, मतलब ठीक है, तो इसलिए आप कुरान और सुन्नत है तो यानी वो जिस तरह भी ऑर्डर का बताएंगे वो क्यूट जो है पेंटिंग को नहीं कर सकती, मतलब तो जाहिर है आप एक इस्लामिक सोसाइटी में रहते हैं, अमेरिका में थोड़ी आपको, इसलिए आपको कुरान और सुन्नत की तो आप ओढ़नी ही ओढ़नी है, लेकिन हाँ तो आपने ओढ़ दी, लेकिन तो कुरान और सुन्नत आप क्या बयान कर रहे हो, कौन सा कुरान बयान कर रहे हो, कौन सी सुन्नत बयान कर रहे हो, जो तुम्हारी फर्जी है तुम बयान कर रहे हो, तो तुम उसके अल्फाज को जो है छोड़ने के बजाय अल्फाज को लोग अकड़ लिया और उसके अंदर जो है तब्दीलियाँ पैदा कर रही, क्योंकि जो चाय शायन इतने कब्र थी कि देकर किनारे मुस्तफवी जहाँ में आग लगाती फिरेगी फूल है, कि चिराग मोहम्मद मुस्तफा का और अशरी अमरीका की, इतना में जाओ आप इतना कुछ भी बोलते हैं अमल क्या तुम्हारा अमल उस अगर पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सुन्नत की किताबें है पैगम्बर का जो पेट भर के खाना नहीं है कौन सा बताया था नहीं बताता और आपने तो एक पूरी जिंदगी एक ऐसे गुजरे में असर की जिसके अंदर तीन कमरें समा सकती थी मतलब ये तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है वो है मतलब आप अगर मतलब अभी एक मेरे वो शायद कनाडा से और दुबई से होते हुए आए तो वो बताने लगे कि कहने लगे कि भाई ये जो है आवत इस्लामी के जो अमीर हैं मौलाना इलियास साहब जो है मतलब तो ये आजकल दुबई में जो रहते हैं तो मैंने क्यों क्या वजह उन्होंने कहा कि उनको बताया गया कि भाई आपकी जान को खतरा लाख है तो यहाँ पर आप ऐसा कह रहे तो दुबई में जो है कहते हैं तो मैंने तो वहाँ पे जो है मतलब उनके जो हल्का है बहुत बड़ा असाजिद ने दिया तीन चार है मतलब और कहने लगे वो सहरुल कादरी साहब जो कनाडा में शिफ्ट हो गए तो वो कहने वो कनाडा में रहते हैं वहाँ पे उनका बहुत बड़ा हल्का है बहुत बड़ी मस्जिद है ये वो तो कहने क्या कि वो वहाँ पर किताब वगैरह करते हैं कहने नहीं वो कहने वो जो है सहरुल कादरी कनाडा की जो मस्जिद है मिन्हाज उल-अक़रान की वो कहने मैंने उन्हें कभी वहाँ पे जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं देखा नहीं मतलब और इलियास कादरी साहब को भी देखा नहीं अपनी असाजिद ने नमाज पढ़ दिया मैंने फिर क्या करते हो कहने मैंने पूछा अपने पुरुषों वगैरह से यार ये क्यों नहीं आता भाई जान को खतरा लगा इसलिए जो है जुम्मा की नमाज भी नहीं वो वहाँ पे अदा नहीं कर रही जान के खतरे भाई तो ऐसी जिंदगी का फायदा क्या हर जाओ जाकर ये भाई जुम्मा की नमाज पढ़ो शहीद हो जाओ बस क्यों जिंदा हो भाई तुम अगर मेरी जिंदगी में जो है असाजिद आबाद है और मैं जुम्मे की नमाज दुश्मनों की वजह से मिले लानत भेजो भाई क्या कि एक जुम्मा पढ़ो आखिरी जुम्मा जो है मतलब शहीद हो जाओ मतलब ये भाई ये तो सब अफसाने हैं ना सारे मतलब क्या मैं ऐसी जिंदगी है अगर मुझे कोई कह रहे थे जो आप काम कर रहे हैं आपको कतल कर देगा तो ठीक है भाई अब क्या करें अब जुम्मा मत वही नहीं छोड़ सकते भाई खराबी छोड़ दें ठीक है भरना है तो करेंगे मतलब सब हमने समझ लिया कि मतलब बहुत जिंदगी किसी रोके अख्तियार में जो आग में डाल दिया है हजरत इब्राहिम को तो आग कुछ नहीं कर सकी मतलब अगर अल्लाह ताला का वो ठीक है अगर मौत है तो आनी ही मतलब तो क्या मतलब मौत तो आपका पीछा करती है मतलब तो कुरान में आता है कि जब किसी की मौत आती है तो कत्ल की तरफ चल कर जा रहे तो इससे क्या करना है मौत मौत से तो आपका तस्वुर की कमजोरी है ईमान की कमजोरी है मतलब कि आप जो दुबई चलेंगे और दुबई भी जाकर आप महफूज नहीं हो जब आप दुबई में भी महफूज नहीं हो फिर ऐसी जिंदगी का फायदा क्या है खौफ और जो है मतलब ये कि उसके आईने में फंस रहे शहीद हो जाओ खत्म एक मरतबा आओ आकर के मतलब बोलो यार बस ठीक है मैं तो मुझे कोई परवाह नहीं मुझे कोई शहीद कर देगा कोई गार्ड नहीं कोई गाड़ी नहीं सब हटा दो अल्लाह के ऊपर छोड़ दो कभी अपने आप को अल्लाह के हवाले करके तो देखो जो है मतलब तुम मखलूक के हवाले करते हो तो फिर अल्लाह तुम्हें मखलूक ही के जो हवाले कर देते हैं एजेंसियां आगे बताती हैं हजरत आपको खतरा है ठीक है खतरा तो क्या करें भाई अगर अल्लाह ने मेरी उम्र रखी है आपका ईमान हो तो आप जो सोतक रहेंगे और अगर आप क्या है कितने ही मतलब अनवर सादात को देखें ना अनवर सादात तो कमांडो थे ना मतलब फौज थी पूरी सब उसने जो है कहना वादा जो है मतलब पुलिस को मार दिया उसको मौत तो जब आनी है तो कोई आपको बचा नहीं सकता जो है और जब मौत आप जब पंदर नहीं है कोई आपके सीने में 100 गोलियां उतार दे आपको कुछ नहीं होगा आप बचेंगे वरना बेशुमार वाकत हो चुके हैं आप अगर इन्हीं चक्करों में मतलब जिंदगी अजीज है या अल्लाह की इबादत अजीज है भाई मतलब जुम्मा की नमाज छोड़ना कोई मामूली बात है जो आदमी तीन जुम्मे तक नमाज में पड़े हुई अरे ईमान से खारिज हो जाता है क्या भाई ऐसी जिंदगी क्या फायदा कि मेरा दायरा ईमान ही खतरे में पड़ गया वही है ना बात की मतलब ये कि आपकी मेटाफिजिक्स जो है वो री इन्फोर्स नहीं हो रही बल्कि री डिफाइन हो रही है ना मतलब मॉडर्न जो है मतलब डोमिनेट कोर्स आपकी मेटाफिजिक्स को आपकी ईमानियात को आपकी इलाहियात को आपके एटीट्यूड को आपकी प्रैक्टिस को रीडिफाइन कर रहा है रीशेपिंग कर रहा है ठीक है मतलब एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर को मतलब इस्लामी स्ट्रक्चर डोमिनेट करने के बजाय अगर कोई आदमी बोले हाँ भाई ठीक है मैं मुझे कोई परवाह नहीं है मैंने सब खत्म कर दिए सारी अपनी हिफाजती इकदाम मैं खुद जाऊंगा मैं शहादत की मौत करना चाहता हूँ उसकी इज्जत होगी या उसकी इज्जत होगी कि जो अपनी जिंदगी को बचाता रहे और फिर भी मरेगा उसी वजह उसका मुकर्रर है कानून के अंदर इज्जत और उसके पैमाने बदल है ना मतलब जिंदा रहना मतलब है ना शहादत आना कह रहे हैं ना मतलब इस्लामिक कम्युनिटी को हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा किसी ने भाई वो खारजी जो है वो आपकी जो है मतलब वो कर रहे हैं आपने फरमाया भाई मैं तो मुंतजर हूँ कि कोई आए और मेरी गर्दन काट दूंगा भाई क्यों ना कि हजू साहब ने फरमाया था कि जो है तुम्हें शहादत ठीक होगी लिहाजा मैं तो उस शख्स का इंतजार कर रहा हूँ जो मुझे शहीद करने के लिए आए वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई शहादत क्यों नहीं हो रही और मेरी गर्दन पे कौन खारजी आ गया कंजर चलाएगा यहाँ पे शहादत मिल रही तो शहादत से बचने के लिए भाग रहे हैं मतलब तो ये अगर इस्लामी कहनुमा आया तो फिर शहर इस्लाम का शहर ये होगा जिसमत हो रहा है उम्मत का शहर मतलब अगर मैं आपको सुपुर्द कर दूं अल्लाह के भाई जिंदगी मौत किसी के हाथ में नहीं है मौत जब आनी है तो आपको आएगी मतलब हजरत अली सिंह जी ने पूछा कि भाई अगर एक आदमी अपने आप को एक कमरे में महदूद और महसूर और मुकैद कर ले जिसमें कोई खिड़की और दरवाजा ना हो तो उसको रिस्क कहाँ से पहुंचेगा आपने फरमाया उसको रिस्क उसी रास्ते से पहुंचेगा जिस रास्ते से मौत का फरिश्ता पहुंचेगा यह अच्छा अगर तुम्हारे इतना भी ईमान नहीं है तो ध्यान रहे तुम्हारे इस्लाम पर जो मतलब ठीक है जी और कोई सवाल इसके साथ ही आज की कशिश के अस्पताल में आवाम ये मतलब ना ये जो आवाम जो इस वक्त हो रहे हैं मॉडर्नाइज हो रहे हैं और जो इनके अंदर दुनियादारी पड़ रही है उसकी वजह क्या है उल्मा में दुनियादारी पड़ रही है तो आवाम में भी पड़ रही है उल्मा के अंदर दुनिया से जो है मतलब ये कि गुरेज पढ़ता जाएगा दुनिया को हकीक समझेंगे तो आवाम भी आवाम तो पैरवी करते हैं उल्मा की है मतलब आलिशान मस्जिदें बन रही हैं मस्जिदें आलिशान है ईमान जो है बिल्कुल ही खतर है जो है मतलब इतराफ हो रहा है मतलब मस्जिद है तीन आदमी नमाज पढ़ रहे हैं लाइटें जल रही है अरे भाई कौन से इस्लाम है भाई एक लाइट जलाओ खत्म नहीं वो मस्जिद का हुसन जो है वो क्योंकि आपने अपने घर में भी यही इतराफ किया हुआ है तो आपको कोई इतराफ मस्जिद में भी अच्छा लगता है लेकिन तो पूरा आप जो है कॉमिनेंट कल्चर को आप जब एक्सेप्ट करते हैं तो जाहिर होते फिर जाहिर होते फिर आप में सलाहियत नहीं होती सोचने की